السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سورة زخرف آیت نمبر 26 سے 56 تک دیکھتے ہیں. اس کا پہلے لفظی ترجمہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں، مِمَّا تَعْبُدُونَ، اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي، مگر وہ ذات، فَطَرَنِي، جس نے پیدا کیا مجھ کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، سَيَهْدِينِ، عن قریب ہدایت دے گی مجھے یا رہنمائی کرے گی میری. نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ میری کے لیے. وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنا دیا اس کو کلمتن، بات، باقیتن، باقی رہنے والی، فی، میں، عقب ہی، اس کی پیچھے، یعنی عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا، تو مراد ہے اولاد، اس کی اولاد میں مراد ہے یہ، لیکن اس کا معنی نہیں ہے. معنی وہی ہے کہ اس کے پیچھے، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں، بل بلکہ، متعتو، تاکہ اوپر پیش ہے، میں نے متا دیا. متا کیا ہوتا ہے؟ سامان دنیا، تھوڑا فائدہ. ہا اولائی، ان لوگوں کو، و آباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی، یہاں تک کہ، جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق، و رسول مبین، اور رسول مبین، کھول کے بیان کرنے والا. ولما، اور جب جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق، قالو، انہوں نے کہا، ہذا سحر، یہ جادو ہے، وانا، اور بے شک ہم بھی ہی، ساتھ اس کے، یعنی اس کا، کافرون، انکار کرنے والے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزیلا، کیوں نہیں نازل کیا گیا، ہذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، اوپر کسی شخص کے، من القریتین، قریہ بستی کو کہتے ہیں، دو بستیوں میں سے، عظیم، عظمت والی. اہم، کیا وہ، یقسیمون، تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو، نحن، ہم، قسمنا، تقسیم کی، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، معیشت ان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، بعدہم، ان میں سے بعض کو، فوق بعد، ان بعض پر، درجات، ان درجوں میں، لیتخذ، تاکہ وہ بنائیں، بعدہم، ان میں سے بعض کو، بعدن، بعض کا، سخریہ، تابدار، یا خدمت گزار. ورحمت ربی کا، اور رحمت تیرے رب کی، خیرم، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، نہ ہوتی یہ بات، یا نہ ہوتا، ایکون الناس، کہ ہو جائیں گے لوگ، امت واحدتا، ایک ہی امت، لا جعلنا، البتہ ہم کر دے، لیمن، لیے اس کے جو، یکفرو، کفر کرتا ہے، برحمان، ساتھ رحمان کے لیے، بیوتی ہم، ان کے گھروں کے لیے، لیے سقوفن، چھتے، من فدوتن، چاندی سے، و معارجہ، اور سیڑھیاں، मेराज भी इसी से, अरूज भी इसी से। अलैहा, उन पर, यज़हरून, वो चढ़ते। वली बुयूतिहिम, और उनके घरों के लिए, अबवाबन, दरवाजे, व सुरूरन, और तख्त। अलैहा, उस पर, यत्तकीऊन, वो तकिया लगाते। व जुखरूफन, और सोने के। व इन, आगे इन का माना यहाँ पे बेशक आ रहा है, क्योंकि आगे ल है। और बेशक कुल्लू जालिका, सब ये, लम्मा, अगरचे, मताउल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल आखिरतु, और आखिरत, इंद रब्बी का, अल्लाह के नजदीक, तेरे रब के नजदीक, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए। व मई या आशु, और जो गफलत बरतता है या अंधा बनता है। दोनों ही माने इसमें हैं, क्योंकि आइन शीन वाओ और आइन शीन या, दोनों ही इसके रूट हो सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम तफसीर में देखते। अन जिक्र रहमान, रहमान के जिक्र से, नुकैद, नुकैद का कौफ या बौद इसका रूट है। मुकर्रर करना, लाजिम कर देना। लहू, लिए उसके, यानी हम मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए, शैतानन, एक शैतान, फहुआ, तो वो, लहू, लिए उसके, करीन, साथी हो जाता है। वह इन्नहुम, और बेशक वो, लयसुद्दूनहुम, वो अलबत्ता रोकते हैं उनको, अनिस सबील, रास्ते से। वह यहसबूना, और वो समझते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, मुहतदून, हिदायत याफ्त हैं। हत्ता, यहाँ तक कि, इजा जाना, जब वो आएगी, गा ना हमारे पास, कौला, कहेगा, या लईता, ए काश, या लईता ना, कलमा ऐसा है जो, यानी तमन्ना का कलमा, ऐसी तमन्ना जो पूरी नहीं हो सकती। ए काश, बईनी, व बईना का, मेरे दरमियान और तेरे दरमियान, बाद, दूरी हो। बाईद भी इसी से है ना, यानी दूर जो चीज होती। अल मशरिकैन, दो मशरिकों की। फबिसल करीन, तो बहुत बुरा करीन, साथी। वलन यनफाकुम, वलन, और हरगिज नहीं, यनफाकुम, नफा देगा तुमको, अल यौम, आज, इज, जब, जलम तुम, जुल्म किया तुमने, अन्नकुम, बेशक तुम, फिर अदाबी, अजाब में, मुश्तरिकून, मुश्तरिक हो, शरीक हो, यानी सारे। अफ अंत, क्या भला तू, तुस्मिया, तू सुनवाएगा, असुम, बहरों को, सुमन बुकमन तो आप जानते हैं, औ या तहदी, तू राह दिखाएगा, अलउमिया, अंधों को, वमन, और जो कोई काना हो, फी दलाल मुबीन, खुली गुमराही में। फइम्मा, फिर अगर, नज़हबन्ना, नून शुरू में हम, ज़हबा जाना होता है, लेकिन यहाँ पे ले जाने का माना है, ले जाएं हम, बिका तुझको, फइन्ना, तो बेशक हम, मिनहुम, उनसे, मुंतकिमून, इंतकाम लेने वाले हैं। व इम्मा, या नुरियन्नक, दिखाए हम, का, आपको, अल्लदी, वो चीज, वअदनाहुम, जिसका वादा किया हमने, हम उनसे, फइन्ना, तो बेशक हम, अलैहिम, इन पर, मुक्तदिरून, कुदरत रखने वाले। फस्तमसिक, पस मजबूत थाम लीजिए, बिल्लजी, उस चीज को, ऊ ही या, जो वही की जाती है, इला तरफ, क्या, आपकी, इन्न का, बेशक आप, अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हैं। वह इन्ना हो, और बेशक वो, लज़िक्रुन लक, अलबत्ता जिक्र है, लक, तेरे लिए, वली कौमी का, और तेरी कौम के लिए। वह सौफा तुसअलून, और अनकरीब तुम सवाल किए जाओगे। वसअल, और पूछ लीजिए, मन अरसलना, जिसको भेजा हमने, मिन कबली, आप से पहले,
من رسلنا رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمن رحمان کے سوا، آلیہتن کچھ آلیہ کچھ الہ، یعبدون کہ ان کی بندگی کی جائے، مجھول ہے، یعبدون نہیں ہے، یعبدون. ولقد اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتینا ساتھ ہماری نشانیوں کے ساتھ اپنی نشانیوں کے، الہ فرعون و ملئہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فقالا تو اس نے کہا انی رسول بے شک میں رسول رب العالمین رب العالمین کا. فلما جاءہم پھر جب وہ لایا ہم ان کے پاس بھی آیاتینا ہماری آیات، اذا تب ہم وہ منہا ان پر یضحکون ہنستے تھے، وما اور نہیں نوریہم ہم دکھاتے ان کو، من آیتن کوئی نشانی، اللہ مگر یہ اکبر وہ زیادہ بڑی ہوتی، من اختیہ اپنی بہن سے، و اخذناہم اور پکڑ لیا ہم نے ان کو، بالعذابی ساتھ عذاب کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں، وقالو اور انہوں نے کہا یا ایہ الساحر اے جادوگر، ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے، بوجہ اس کے جو عہدہ اس نے عہد کیا، عندک تیرے پاس یعنی تیرے ساتھ مراد یہ، اننا بے شک ہم، لمحتدون البتہ ہدایت یافتہ ہیں. فلما پھر جب، کشفنا کھول دیا ہم نے، کاف شین فا اتر کشف کھولنا، عنہم العذاب ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون تب وہ پھر جاتے ہیں، نہ کہتا توڑ دینا پلٹ جانا، ونادا اور پکارا فرعون فی قومی ہی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قومی اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی، وہذہ الانہار اور یہ نہریں، تجری من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو، ام کا معنی کیا کبھی بلکہ کبھی ہو سکتا ہے، بلکہ یا کیا، انا خیر من ہذا میں بہتر ہوں اس سے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام، الذی جو ہوا مہین وہ حقیر ہے، ولا یکاد اور نہیں یکاد یکاد قریب ہونا، قریب کہ وہ یبین مبین آپ نے پڑھا اب یبین ہے بات ہوئی ہے وہ واضح بات کرے، اب یہ ورب کی فارم میں ہے، فلولا تو کیوں نہیں، القیہ اتارے گئی، علیہ اس پر اسویراتن اساویر آپ نے پڑھا ہوگا تو اسویراتن کنگن، من ذہب سونے کے، او یا جاء آئے معہ ساتھ اس کے، فرشتے مقترنین ساتھ رہنے والے، قاف رانون سے قرین جو آپ نے پہلے پڑھا وہی یہاں پہ اسی سے مقترنین ہے، روٹ وہی ہے یعنی جو ساتھی ہوں، فاستخف تو خفیف پایا ہلکا پایا، خافا اس کا روٹ ہے، فاستخف تو ہلکا پایا اس نے، قومہ اپنی قوم کے، فاطاعوہ اپنی قوم کو، فاطاعوہ تو انہوں نے اطاعت کی، ہو اس کی، انہو بے شک وہ، کانو تھے وہ، قومن فاسقین فاسقون، فلما تو جب، آسفونا وہ غصے میں لائے ہم کو، اسف کہتے افسوس کو، اور بہت زیادہ غصے کے لیے بھی آتا ہے، انتقمنا انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے، اجمعین سب کے سب کو، फजालनाहुम, तो बना दिया हमने उनको सलफन, पेशरो। सलफ कहते हैं जो गुजर चुके हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना असलाफ, हमारे असलाफ ये करते थे, यानी जो हमारे नेक लोग जो गुजर गए, तो जो गुजर चुका है हम सलफ सालिहीन भी कहते हैं। वह मसलन, और एक मिसाल, लिल आखिरीन, बाद वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक का आज का हमारा लेसन है। देखते हैं आज के लेसन में कुछ बहुत अहम आयात हैं पहले रुकू के अंदर, और उसके बाद तो मूसा अलैहि सलाम का जिक्र है। देखिए शिर्क की मुसम्मत है इस सूरत में, और यहाँ पर एक वो शिर्क था जैसे कि इब्राहिम अलैहि सलाम के ज़माने में था कि सितारों की पूजा और सूरज चांद को पूजना, और इसी तरह मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में फिरौन की पूजा। हर किस्म के शिर्क से बर्रात है, हर किस्म के शिर्क की नफ़ी है, और इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी नफ़ी की इस चीज़ की, और आगे मूसा अलैहि सलाम की भी बात आएगी। तो शुरू करते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 26 से 56 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीही व क़ौमिही, और याद करो, इस जब आ जाता है तो यानी कोई पुरानी बात को याद को कराया जा रहा है कि याद करो जब ये हुआ था, क्या कि जब कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किससे, अपने वालिद से, व कौमी ही और अपनी कौम से, क्या कहा था, इन्नी बरा मिम्मा तअबुदून, ये नहीं आया इन्नी बरी ये भी आता है, लेकिन यहां पर इस जगह पे सूरह जुखरुफ में बरा आया जो कि मस्दर है, और मस्दर सिफत के तौर पे आया, यानी जब मस्दर सिफत के तौर पे आता है तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि हम कहें फलां जो है सच्चा है, या हम कहें फलां तो सरापा है सच है, वो है ही सच, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। जब हमने कहा फलां सच्चा है तो ठीक है कि उसकी खूबी है, लेकिन जब हमने कहा वो सच है सरापा है सच है, तो उसमें ज्यादा ताकीद है, ठीक है, बहुत मुबालगा आ जाता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एग्जेजुरेशन, कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बाप से भी कहा और अपनी कौम से भी ये कहा कि मैं तो बरा हूं, मजदर के तौर पे आया है कि मैं तो बिल्कुल बरी जिम्मा, मेरा कोई लेना देना ही नहीं, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस, कि जिसकी तुम इबादत करते, दूर दूर का मेरा तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है, ये माना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहां पर क्यों आया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो मुशरिकीने मक्का को उनके शिर्क पर मुजम्मत की और उनको तौहीद की तरफ बुलाया, तो तौहीद के जो अलम बरदार थे, तौहीद के जो सबसे बड़े, तौहीद की तरफ बुलाने वाले, जिनको ये कहते थे कि हमारे बाप इब्राहिम अलैह सलाम और इब्राहिम अलैह सलाम की हम उनके दीन पे हैं, उनके तरीके पे हैं, उनको अपना बड़ा समझते थे, बड़ा मानते थे, तो यहां बताया गया इब्राहिम अलैह सलाम तो ये नहीं कहते थे जो तुम कहते हो, इब्राहिम अलैह सलाम तो बुतों के पुजारी नहीं थे, वो तो शिर्क से बिल्कुल बेजार थे, उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम कर रहे हो, तुम्हें इस पे तो फख्र है कि वो तुम्हारे बड़े थे, लेकिन ये भी तो देखो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते थे और तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम उनके रास्ते के ऊपर हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था कि मैं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं इस शिर्क के साथ, मैं तो इसकी मुजम्मत करता हूं, मैं इससे बरी उजिम्मा हूं, उन्हीं को तुम अपना बड़ा मानते हो ना, तो फिर उनके रास्ते पे चलो। दूसरे ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो, तुम कहते ना हम तो अपने आबाओ अजदाद के दीन पे चलेंगे, तो अब तुम तो अपने आबा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा मानते हो, तो फिर इब्राहिम के रास्ते पे चलो, और दूसरे ये एक और बात भी, ये इनके जिक्र के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहां पे लाने का एक मकसद ये भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बाप की और अपने बड़ों की दीन की पैरवी नहीं की थी और हक का साथ दिया था, तौहीद पे रहे थे। तो तुम भी उनके रास्ते पे हो ना, अगर अगर तुम ये समझते हो कि तुम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे भी हो, तो तुम भी अपने जो आबा हैं उनके रास्ते पे ना चलो और उनसे अलग हक का रास्ता जो है उसको इख्तियार करो। तो लिहाजा देखो तो सही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद वाले थे, तो तुम भी तौहीद के रास्ते पे आओ। अब इसको एक और एंगल से भी आज हम देखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी अपने बाप को भी ऐसे कहा था और बहुत स्ट्रॉन्गली कहा। मैंने आपको बताया ना, बरा वला के उलट है, यानी कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक डिफरेंट एंगल से आज इसको हम ऐसे देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाजे कर दिया अपनी कौम के ऊपर कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से जो तुम कर रहे हो। हालांकि एक ही जगह पर रहते थे, एक ही मुल्क में रहते थे, हिजरत तो उन्होंने बाद में की थी, जब उनको आग में डाला गया उसके बाद हिजरत की थी। लेकिन जब तक वो अपनी कौम में रहे, उन्होंने वाजे किया, क्लियरली उनको कहा कि मैं इस पे नहीं हूं। ये भी एक तरह की हिजरत होती है जिसमें साइकोलॉजिकली इंसान दूसरे से ला ताल्लुक ही इख्तियार करता है, हालांकि एक ही जगह पे रहता है। ये बताना इसलिए आपको जरूरी है कि बाज दफा हम ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं या ऐसे खानदान में होते हैं जिनके तौर तरीके, आदतें, लाइफस्टाइल या बाज औकात मजहब भी हमसे डिफरेंट होता है। अब हम फिजिकली भी हिजरत नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है या हमारी कोई मजबूरियां हैं, हम वहां से नहीं जा सकते या उनसे नहीं निकल सकते। ऐसे वक्त में भी ये जरूरी है कि इंसान साइकोलॉजिकली उनसे सेपरेशन इख्तियार करे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन सारी चीजों से जो आप करते हैं, वो चाहे आपकी कौम है, खानदान है या माशरा है, वो मुल्क है, जो भी है। ये नहीं है कि अगर हम उनके अंदर रहते हैं तो अब ये जरूरी है कि चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर की जो सारे कर रहे हैं हम भी वही करते जाए, या नहीं भी कर रहे तो उनको एंडोर्स करें कि चलो कोई बात नहीं, तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे इससे कि तुम ये सब गलत कर रहे हो। जरूरी है कि इंसान इस बरात का दिल से भी कायल हो कि मैं, मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, और जुबान से भी इजहार करे। जहां पर भी उसके लिए मौका है वो कहे कि मैं, ये गलत है और मैं इस चीज के साथ नहीं। अल्लाह इसकी कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन का खौफ है कि भाई कोई कोई टॉर्चर हो जाएगा या कुछ ऐसी बात हो जाएगी, जुबान से नहीं बोल सकते तो तब तब दिल से बुरा जाने, लेकिन अदरवाइज खामोश रहना नहीं है, उसका इजहार करना है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम करते रहे और सारे पैगंबरों की यही सुन्नत रही है। वो ये नहीं देखते थे कि इसके बाद लोगों में हमारी पजीराई कितनी होगी। आप मुझे बताएं, जब एक शख्स वाहिद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसलिए उनको पूरी उम्मत कहा गया, अकेले थे, जब वो खड़े हुए हैं अपनी कौम के अंदर और उन्होंने ये ऐलान कर दिया, आपका क्या मतलब है ऐसा ऐलान करना, क्या चीज लेकर आएगा ये बताइए, क्या लाएगा? उनको हार पहनाए जाएंगे, उनको शाबाश दी जाएगी, उनको को तरक्कियां मिलेंगी, या उनके ऊपर एक मुसाइब का पहाड़ टूटेगा, मुखालफतें होंगी, हर तरफ से उनके ऊपर जुल्म ढाया जाएगा। देखिए, ये चीज को समझना है हमें कि हम हर वो काम नहीं कर सकते या हर वो बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर हमें लोगों से तारीफें मिले, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, उनके साथ चलना, क्योंकि वो नॉर्म ऑफ द टाइम है। आजकल यही चल रहा है, इसी कोशिश में लगे रहना कि हम सब वही करें जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, बस उसी तरफ को हम चलें जो सब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट चलना वो हमारे लिए मुश्किल इसलिए होता है कि फिर लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे अजनबी समझेंगे या लोग मेरी मुखालफत करेंगे, मुझे बुरा कहेंगे, सब मेरी बातें करेंगे, लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। इस डर से इंसान हक बात कहने से बाज रहता है और उन्हीं तरीकों पर चलता है जो लोगों के तरीके हैं, और यही आज हो रहा है। जबकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखें, जिनको हम भी अपना बड़ा मानते हैं और हर मजहब वाले मानते हैं, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फिजिकली भी हिजरत की थी और उससे पहले अपने आप को इनसे अलग किया था कि मैं इसमें मुलव्विस नहीं हूं, ये भी एक लाताल्लुक ही है और ये जरूरी है कि इंसान ये कहे जब भी किसी के गलत तरीकों को देखे, कम अज कम अपने दिल में तो कहें कि या अल्लाह मैं इस चीज से राजी नहीं, मैं इससे बरी उज़िमा हूं, मैं इनके साथ नहीं हूं, चाहे वो हमारे अपने प्यारे ही क्यों ना हो। बाज दफा हम अपनी औलाद में या अपने रिश्तेदारों में ऐसी चीजें देखते हैं, हम उनसे अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि वो कर रहे होते इसलिए हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाज दफा देखा गया है कि किसी का अगर बच्चा किसी गैर मुस्लिम से शादी कर रहा है तो वो भी शादी में जाके खड़े हो जाते हैं, क्या करें हमारे बच्चे हैं ना, तो क्या करें, हम इनको छोड़ तो नहीं सकते। नहीं, जरूरी है कि इजहारे ला ताल्लुक की इख्तियार किया जाए, जरूरी है कि ये कहा जाए कि ये गलत है और मैं इससे बरी उसे हूं, या इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। बाज दफा ऐसे होता है कि किसी का शौहर हराम कमाई करके ला रहा, अब उस औरत के लिए लाजिम है कि वो ये कहे कि ये गलत है, ये नाजायज है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ए अल्लाह मुझे मेरी इस पे पकड़ ना करना और कभी भी इस पे राजी खुश ना हो जाए। इसी तरह बाज दफा खानदानों में ऐसे, जाहिर है आपको हमेशा मुआफिक लोग थोड़ी मिलते हैं, खानदानों में ऐसे लोग भी होते हैं जो दीन से दूर, दीन की बातों से चिढ़ने वाले, उन्होंने अलग ही रास्ते अख्तियार किए होते हैं, अब हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो खानदान वाले होते हैं। उस वक्त भी जो हरकतें वो कर रहे होते, उसके ऊपर आराम से बैठ नहीं जाना कि कोई बात नहीं है, आप क्या करें, अब हमारे खानदान वाले कर रहे हैं तो इसलिए ठीक हो गया है, या उनकी सफाइयां पेश करें, या उनको कुछ भी ना कहें, बल्कि जिस हद तक हो सके मुमकिन उस हद तक अपने तौर पे जरूर कहें ताकि हम खुद बरी उज़िमा हो जाएं। क्योंकि देखते हैं हमेशा हमें हमारे मुआफिक लोग नहीं मिलेंगे, मुआफिक मुआशरा नहीं मिलेगा, हर वक्त ये शिकायत करते रहना बस ये हमें ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इससे हम बरी उज़िमा नहीं हो जाते, अब वो खुद भी करना शुरू कर दे, या खुद नहीं भी कर रहे तो दिल में उसको बुरा ही ना जाने, ये इजहार ही ना करें कि ये आप लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि हम हर जगह अच्छे बनना चाहते हैं, हर जगह हम अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, बस मेरी कोई बात से कहीं कोई मुझके ऊपर मेरे ऊपर ना कोई तान आए, मेरे ऊपर ना कोई बुराई आए, लिहाजा हम कोई ऐसी बात ही नहीं करते जो कहीं दूसरे को नाजायज लगे, कोई गलत लगे, कोई दूसरे को बुरी लगे, लेकिन जहां पे हक कहा जाता है वहां पे हक कहना जरूरी है, वहां पे बोलना जरूरी है। तो बाज दफा हमारे बहुत करीबी भी वो हो सकते हैं, तो उनकी भी तारीफें ना करें। उनके भी खास तौर पे औलाद जब होती है उनकी भी जस्टिफिकेशंस ना दे, बल्कि उनको भी कह दे और लोगों को भी कह दे, नहीं, मैं इसमें इस चीज में साथ नहीं हूं। तो ये बात, ये जो यहां कही गई कि मैं बरी हूं इससे जिसकी तुम इबादत करते हो, अरे उन्होंने कह दिया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जो हम सूरह काफिरून में पढ़ते हैं ना, लना अमालुना वलकुम अमालकुम, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए अमाल, लकुम दीनुकुम वलिया दीन सूरह काफिरून में आता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ये नहीं कि हम सब एक ही हैं, सब अच्छा है, कोई बात नहीं, वो भी सही कर रहे हैं, नहीं, मुसलमान और तौहीद वाला ये गवारा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की हदें टूट रही हैं, शेर खो रहा है, ये मैरिजेस हो रही हैं, और वो कहे कि नहीं कोई बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल चीज ही है, कोई बात नहीं, जैसे दूसरी शादियां होती हैं तो इनकी भी हो सकती। लोग इतनी हराम काम कर रहे हो और इंसान ये सोचता रहे सब ठीक ही है, ये भी सही है, वो हम भी सही हैं। बाज लोग तो ये कह देते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी तो आखिर ये खुदा तक को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा एक को तो सारे ही मानते हैं ना, तो हम भी एक को मानते हैं, तो कोई यानी फर्क ही नहीं रहा। नहीं, जो शिर्क है उसको कभी भी एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, गवारा नहीं कर सकता। तो अपनी जुबान से और अपने अमल से बरात का इजहार किया जाए, जहां पे अमल नहीं हो सकता कम से कम जुबान से बोला जाए, सब चीज को ये ना कह दिया जाए सब अच्छा है सब ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ अपने बाप से नहीं कहा, अपनी कौम से भी कहा, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करूं, बाप की रजा भी तो चाहिए ना, बाप की रजा में ही तो अल्लाह की रजा है, तो लिहाजा बाप को कैसे नाराज कर सकता हूं, नहीं, अगर वो शिर्क कर रहा है तो उसको भी कहना जरूरी है, हालांकि बाप का एक मकाम है, एक मर्तबा है, और एक बेटे के लिए कहना कितना मुश्किल है, उसको पता है कि अगर मैं ये कहूंगा तो ये मैं बाप की गुड बुक्स में नहीं रहूंगा, बाप मुझे अच्छा नहीं समझेगा, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाज नहीं आए ये बात कहने से कि ये गलत है। अब हमारी दो एक्सट्रीम्स हो जाती हैं, या तो हम बदतमीजी पे उतर आते हैं, लोगों को ताने दे रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है वो क्या, ये एक एक्सट्रीम है, और दूसरी है कि अच्छे बन के रहना सारे के साथ, बस ये नहीं जी आप भी ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही एक्सट्रीम लोगों की बातें हैं, आप भी सही हैं, दोनों ही गलत ना। तो ऐसा रवैया इख्तियार किया, देखिए पैगंबरों ने, उन्होंने किसी जगह पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बदतमीजी कर रहे हैं अपने बाप से, ये आबती कह के ही बात की है मेरे अब्बा जान, दूसरी जगहों में इसकी डिटेल आती है, यहाँ पे मुख्तसर है, कहीं भी उनके एहतराम उनकी इज्जत में कमी नहीं लेकर आए। और दूसरी तरफ कहीं ये भी नहीं है कि वो कहते हैं अच्छा चले आप क्या किया जाए, बाप है ना तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि अब हम तो दीन सीख रहे हैं, हमारे माँ बाप वो उन्हीं तरीकों के ऊपर, वो ही बिदतें, वो ही शिर्क, वो ही सब चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या करें, तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, उन्होंने कैसे किया था डील। इसी तरह कोई भी प्यारा रिश्ता, जैसे बाप का रिश्ता प्यारा, इस तरह और बहुत से प्यारे रिश्ते होते हैं, खैर ख्वाही के साथ बात करनी और इज्जत और एहतराम को नहीं जाने देना, इवन जब अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तब भी ये नहीं कि तांस ताने ऐसी बातें करना कि जो दूसरे को जिच करके रख दे, या ऐसे रवैये अख्तियार करना, वो नहीं। एक तमीज के दायरे में रहते हुए लॉजिक से बात की जाए, क्योंकि बाज दफा हम इस तरह के रवैयों से ही लोगों को भगा देते हैं और हमारी बात पीछे रह जाती है, हमारे जो बदतमीजी होती है उसकी वजह से लोग पुट ऑफ हो जाते हैं, वो भाग ही जाते हैं, वो बात सुनेंगे क्या जिस वक्त रवैया ऐसा होगा। तो एक तो ये कि अल्लाह की हदें टूट रही हूं, तो हम ये ना कह के बैठ जाएंगे वो तो क्या हो गया, मैं तो सबको ही खुश रखती हूं, अल्लाह का दीन तो चाहे टूटे चाहे जो जो मर्जी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, लोगों के सामने बस मेरा अच्छा फेस रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ सबसे लड़ते बढ़ते फिर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये हिकमतें हमें पता चलती हैं, अंबिया ने कैसे बात की, ये उन्होंने अपने बाप से भी और अपनी पूरी कौम से कह दिया। कितनी बड़ी बात है अपनी पूरी कौम से ये बात कह देना, यानी सबको ही अपनी मुखालफत पे खड़ा कर दिया, छुपा के नहीं रखा इस बात को, कि ये नहीं किया कि मुझे क्या आप कौम जो मर्जी करे, या मुझे फिर ये क्या समझेंगे या क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मैं कैसे इनके साथ बिगाड़ सकता हूं। और लोग इसमें क्या कह देते हैं, दुनिया को भी तो साथ लेके चलना है ना, इसको वो दुनिया कह देते, दीन है लेकिन ठीक है दीन है लेकिन दुनिया को भी तो साथ चलाना है ना हमने। और मतलब क्या होता है कि इनको भी तो खुश रखना है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनके पास भी तो मुझे अच्छे बन के रहना है ना। नहीं, या तो फिर अल्लाह को खुश कर ले, या उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं उनको खुश कर ले, एक ही हो सकता है। तो दिली तौर पे भी उनसे अलग हो, दिली तौर पे भी इस चीज को गलत माने, और जुबान से भी इस मामले में मीठे मीठे बनने की जरूरत नहीं, इस मामले में साफ उल साफ बताया जाए कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और ये जो आयत है समझ लें, सूरह काफिरून की ही तफसीर है इस आयत में। और सूरह काफिरून को हम कब पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम सुबह, देखें अभी हमने जो सुबह की पहली नमाज पढ़ी, स्टार्ट ही दिन का किया है, तो सुन्नत पढ़ते हैं ना, दो सुन्नत, उसमें पहली रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफिरून पढ़ते थे, ठीक है, और सेकंड में सूरह इखलास, मुख्तसिर पढ़ते थे इन दो सुन्नतों को, इनको लंबा ना करें, सुन्नत के मुताबिक इनको इसी तरह पढ़ें, सबको आती सूरह काफिरून और सूरह इखलास भी आती। और दूसरी जो फर्ज है फजर के, वो आपने लंबे करने, वो जितने भी लंबे करें, लेकिन सुन्नतों को नहीं करना। इसी तरह जो हमारा लास्ट हमारी नमाज है दिन की, वो कौन सी है, वितर, वितर के ऊपर हम खत्म करते हैं अपने डे को, यानी अपने रात की सारी नमाजें पूरे रात की खत्म होती हैं वहां पे। तो वितरों के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब तीन वितर है तो सेकंड रका में सूरह काफिरून तिलावत फरमाते थे, पहली में सूरह आला, फिर काफिरून, फिर इखलास, तो उसमें भी काफिरून है। अब देखें सुबह भी की तो बरात के साथ इनसे, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते, जुबान से इजहार हम कर रहे हैं सुबह भी शाम भी, हम अपनी सुबह का आगाज भी इससे करते हैं और इख्तिताम भी अपने दिन की नमाजों का इससे करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितना ये कहते हैं, नहीं, ये इनके तरीके, ये इनका लाइफस्टाइल, ये इनकी बातें, ये इनका अकीदा होगा, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, कितना ये करते हैं। या हम भी जिसको देखते हैं जिस तरीके पे देखते हैं उसी बोट में बैठ जाते हैं, वही तरीके अपना लेते हैं, क्योंकि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है और उन लोगों का वो चीज अच्छी लग रही है, इनकी होली अच्छी लग रही है, उनकी क्रिसमस अच्छी लग रही है, उनका वैलेंटाइन अच्छा लग रहा है, मैं सब चीजें ले लूंगी, इनका पहनना ऐसा अच्छा लग रहा है, उनका ओढ़ना अच्छा लग रहा है, ये वाला इनकी जो वो हराम चीजें खा रहे हैं वो वाली मुझे पसंद आ रही है, इनके तौर तरीके मुझे अच्छे लग रहे हैं, हालांकि वो सब अल्लाह के यहाँ गुनाह के काम है, नाफरमानी के काम है, लेकिन वो सब मुझे पसंद आ रहे हैं, लिहाजा मैं सबको ले रही हूं और फिर कह रही हूं मुंह से लकुम दीनुकुम वलियदीन। ये कैसे हो सकता? तो इस बात को समझिए कि ये मामूली बात नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम सीख रहे हैं ना, ये कहना बहुत बड़ी बात है। और आज भी हमें इसी चीज की जरूरत है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे जिससे तुम इबादत करते हो, जो तुम तरीके रखते हो, जो तुम काम कर रहे हो। अगर आज लोग अपना जेंडर बदल रहे हैं, मर्द औरतें बन रहे हैं, औरतें मर्द बन रही हैं, या ऐसे हराम काम जो कौमे लूत ने किए थे वो किए जा रहे हैं, या ऐसी रसूमात की जा रही हैं जो शिरकियां हैं, या कोई बिदात के अंदर है, या और जितने भी आप देख रहे हैं आजकल काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, हमें जिनका पता है कि अल्लाह ताला ने इस चीज से मना फरमाया, हम क्यों नहीं फिर कहते, कम से कम अपने आप के अंदर ही कह दें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या अल्लाह मेरी इस पे पकड़ ना करना, या बस ठीक है कोई बात नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी तरह डगर पे जाते हैं जो वो कर रहे हैं, तो ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं, चाहे सारा माशरा कर रहा हो, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम इसमें थी। हमारे यहां तो सब नहीं ऐसा कर रहे होते, तब भी हम उन लोगों को देखते हैं जो बुराइयों के अंदर हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अकेले खड़े हो गए थे, पूरी कौम दूसरी तरफ थी, हत्ता के बाप तक भी, अपने घर तक में भी, और हम क्या कह देते हैं, क्या करें हमारे तो घर में ही मुखालफत है, क्या करें तो हस्बैंड नहीं मानते, क्या करें तो वो नहीं मानता, फला नहीं मानता। जब सबको मना के ही दीन पे चलना है तो फिर तो कभी दीन पे नहीं चल सकते, क्योंकि सब तो कभी नहीं मानेंगे, सबको कभी नहीं आप राजी कर सकते। इसके लिए एक अल्लाह को राजी करना अपना मिशन बनाए, तभी सुरखुरू हो सकते हैं कयामत के दिन। वरना अगर आप हर एक का चेहरा देखने लगे, ये भी खुश हो जाए, दोस्तें भी मेरी खुश रहें, सारी दुनिया भी खुश हो जाए, खानदान भी सारे के सारे खुश हो जाए, तो ये नहीं हो सकेगा। इसमें जरूर आप कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को नाराज कर लेंगे। तो लिहाजा हमने ये नहीं देखना कि कौन कौन खुश होता है, या कौन कितने लोग मेरे साथ हैं, या कितने लोग भी ये काम करते हैं, क्योंकि वहां पे कितने लोग कर रहे थे ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, कितने लोग थे जो उनके साथ खड़े हुए थे, कोई भी नहीं, चाहे कोई तन्हा रह जाए और पूरी कौम दूसरी तरफ हो, तब भी उनके दीन को नहीं अपना लेना, उनके तरीकों के अंदर नहीं रच बस जाना। हम तो हिंदुओं के साथ रहे तो उनके तरीके अपना लेते हैं, क्रिश्चियन के साथ रहे तो उनके तरीके अपना लिए, हर एक का तरीका, जैसे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल दीन अता फरमाया, उसमें खुशी के, गमी के, उठने बैठने के, चलने फिरने के, पहनने ओढ़ने के, कमाइयां करने के, खाने पीने के, हर किस्म के अहकामात हमें दे दिए। अब उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, दीन इज वे ऑफ लाइफ, तो हमने उनके दीन को नहीं अपना लेना। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास वो दीन है जो अल्लाह की तरफ से आया, और वो मुकम्मल है और वो प्रिजर्व्ड है, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। अब इसके अंदर, इस अल्लाह के कलाम में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती, हमें इसके ऊपर तो प्राउड होना चाहिए। और हमारा हाल क्या है कि हम इसी को छोड़ छोड़ के भागते हैं और लोगों के तरीकों पर रीझते हैं, और उनके वे ऑफ लाइफ हमें अच्छे लगते हैं, और उनकी हर गिरी पड़ी चीज हमें पसंद आ जाती है, वो बुतों के सामने झुकने लगते हैं तो हम भी कब्रों के आगे जाके झुकना शुरू हो जाते हैं, वो कोई तरीका करते हैं तो हम भी वही चीज उसी तरीके को अपना लेते हैं। तो ये नहीं, इससे बरात का इजहार जरूरी है। ये इजहार अपनी इंसान औलाद के आगे भी करे, आगे यही बात आ रही है। आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आगे देखें, इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहू सयहदीन, सिवाय उसके मैं सबसे बरी उज़िम्मा हूँ, सबसे कह दिया सबसे, जिनकी भी तुम इबादत करते हो, सिर्फ एक से बरी उज़िम्मा नहीं हूँ जिसने मुझे पैदा किया, वो है अल्लाह, और अनकरीब वो मुझे हिदायत देगा, अनकरीब वो मुझे रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब है कि जो पैदा करने वाला है उसी से रहनुमाई भी मिलेगी, वो ही रहनुमाई भी करता है, वो ही हिदायत भी देता है, वो ही दिखाता है राह, वो ही बताएगा किस रास्ते पे चलना है। मैं उससे रहनुमाई लूंगा, उससे गाइडेंस लूंगा। अगर एक इंसान दुनिया जहान से गाइडेंस ले रहा है लेकिन अल्लाह रसूल की बात से गाइडेंस नहीं ले रहा, तो गुमराह हो जाएगा, चाहे उसने कितने ही पीरों फकीरों को बनाया हुआ, किसको बनाया, नहीं, जो अल्लाह की बात है, अल्लाह मुझे गाइड करेगा, और उसकी गाइडेंस ये कुरान है और हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बात ही हम तक पहुंचाई, तो वो गाइडेंस ले रहे हैं तो अल्लाह से, क्योंकि उसी का हक है कि वो मुझे बताए कि मैंने आप किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि मुझे पैदा करने वाला वो है ना। तो जब कोई और मुझे पैदा करने वाला नहीं, तो मैं उनके पास क्यों हिदायत के लिए जाऊं। और यही बात मूसा अलैहि सलाम ने भी फरमाई थी, इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे हिदायत देगा। तो ये जो बात है इन्ननी बरा उम्मीमा ताबुदून, ये ला इलाहा है, और इल्लल्लज़ी फतरनी ये इल्लल्लाह है, तो यहां पे कलमा हो गया, ला इलाहा पहला हिस्सा, इल्लल्लाह दूसरा हिस्सा, क्योंकि अल्लाह ही है ना जिसने पैदा किया, और पहली बात मैं बरी हूं, ला इलाहा ये बात, ला इलाहा है, इन्ननी बरा उम्मीमा ताबुदू, इसको आप तफसीर कर सकते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह आगे, ला इलाहा है आगे, इल्लल्लाह है। वजअलहा कलिमतन बाकियतन फी अकबी लअल्लहुम यरजिउन, और वो ये बात अपनी औलाद में भी छोड़ के गए, यानी वो सिर्फ खुद ही नहीं ये काम किया बल्कि उन्होंने अपनी औलाद की भी फिक्र की। सूरह वकरा में आता है ना कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी और याकूब अलैहि सलाम ने भी अपनी औलाद को वसीयत की, वसा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब, दोनों ने वसीयत की, क्या अपनी औलाद को किस किसी और की इबादत ना करना, तो मुस्लिम ही इस्लाम की हालत में ही तुम्हें मौत है। ला इलाहा इल्लल्लाह है ये कलिमा तुम बाकिया, क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम ये है, क्योंकि ये दीन है इस्लाम, उस वक्त भी यही दीन था जो सब पैगंबरों का दीन था। तो वो अपनी औलाद को भी यानी ये वसीयत करके जाते हैं, ये बताया जा रहा है। इब्राहिम अलैह सलाम का तरीका बाद वालों के लिए भी नमूना है, ये दूसरी तफसीर है, यानी एक तफसीर क्या है कि खुद भी इस पे अमल किया और औलाद को भी इसकी वसीयत की, दूसरी तफसीर क्या है अपने बाद वालों के लिए उन्होंने ये नमूना छोड़ा, ये एग्जाम्पल छोड़ी, ये कलिमतम बाकियतन छोड़ा, हमने बना दिया उसको इस चीज को कि कलिमतम बाकिया क्या मतलब है, बाकी रहने वाली बात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह फी अकबिही उनके पीछे वालों के लिए नमूना। तो यानी उन्होंने फिक्र की अपनी औलाद की और अपनी अगली नस्लों की, और मरते दम भी उन्होंने अपनी औलाद को इसी चीज की ताकीद की। तो देखिए जो भी मोमिन होता है उसके लिए जरूरी है ये, ना सिर्फ अपनी औलाद बल्कि अपनी जुर्रियत के लिए, अपनी सारी जुर्रियत क्या होती है जो नस्ल आगे उस सब के लिए फिक्र करें। रब्बी औज़ेनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, वल में उस दुआ में ये कुरानी दुआ है उसमें आता है ना एक हिस्सा, असलिहली फी जुर्रियती, ए अल्लाह मेरी जुर्रियत की इसलाह कर देना, सिर्फ इतने हिस्से को नमाजों के सजदों में भी मांगे, इतनी तो बात मांग सकते ना, असले ली फी जरूरी, इनकी इसलाह कर देना बहुत जरूरी है। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी औलाद और नस्लों के ईमान की फिक्र करे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, और इसके लिए सिर्फ परेशानी काफी नहीं है, बल्कि उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करना जरूरी है। अपने एक्शन से भी कोशिश करें कि यही उनको तालीम भी दे, उनके ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश भी करें, खुद भी बेहतरीन नमूना बने उनके लिए, खुद भी अमल करके दिखाएं, खुद भी तौहीद पे कारबंद रहें, खुद भी दीन इस्लाम को अपनी जिंदगी में लाएं, अप्लाई करें। इस तरह से हम एक नमूना बनेंगे, एक एग्जाम्पल बनेंगे जो हम छोड़ के जाएंगे अपनी औलाद के लिए। और दूसरी क्या बात कि उनके लिए, तीसरी बात कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, सजदों में जा जा के दुआएं करें, और सिर्फ औलाद के लिए नहीं, पूरी जुर्रियत के लिए, यानी कयामत तक की अपनी नस्लों के लिए। वसले ली फी जुर्रियत लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए, शायद कि वो तौबा कर लें, शायद कि वो नसीहत पकड़ लें, यानी इस तरफ को आ जाए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के का दीन है, उस तरफ आ जाए। यानी मुशरिकी ने मक्का के लिए भी कहा जा रहा है, शायद वो उनके ये बात बताई जाए, शायद कि वो समझ जाए इस बात से। उन्होंने नसीहत की थी तो शायद लोग अल्लाह की बात की तरफ, उनकी बात की वजह से आ जाए। बल मत्ता उलाई, बल्कि मता दी, मता क्या होता है, थोड़ा फायदा, फायदा तो है लेकिन शॉर्ट, थोड़ा, थोड़ी देर का। हा उलाई व अबाहु, इन लोगों को, इनको किन को, जो मुशरिकी ने मक्का थे, कुरैश थे, और इनके आबाओ अजदाद को, हत्ता जाअहुमुल हक व रसूलुम मुबीन, यहां तक कि आ गया उनके पास हक, हक यानी क्या, ये कुरान और एक रसूल जो खोल के बयान कर दे होने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि ये कुरैश, ये मक्का, बेशक ये शिर्क कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी, इतनी मोहलत दी इनकी पकड़नी की, और इनको नेमतें दी, मता दिया, दुनिया का फायदा दिया। अब देख लें आप कि इनको अल्लाह ताला ने अपने घर का मुजाविर बनाया, अल्लाह के घर की खिदमत करने वाला बनाया, इनको रिज़्क़ की फरावानी दी, इनको अमनो आमान अता फरमाया, इनको सारे अरब में इज्जत अता फरमाई। आप देखें सूरह कुरैश में आता है ना, इनके काफले कहाँ कहाँ जाते, लीला फी कुरैश, लीला फी हिमरिल्लत शीता इबसई। तो जब किसी के पास भी नहीं खाना होता था तो इनके पास फरावानी होती थी, जब लोगों के काफले लुट जाते थे, उनके ऊपर हमले होते थे, उनके लिए रास्ते अमन वाले नहीं थे लेकिन इनके लिए अमन वाले थे, तिजारतों के लिए जाते थे, लोग आके यहाँ पे तिजारतें करते थे, यानी यहाँ पे एक बड़ा समझ ले एक फाइनेंशियल हब था, क्योंकि लोग हज के लिए आते थे, उस जमाने में भी हज होता था, यहाँ पे मंडियां लगती थी, यहाँ पे बाजार लगते थे, इनकी इकोनॉमी कितनी फ्लरिश कर रही थी बावजूद इसके कि ये लोग शिर्क करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने फिर भी इनको पकड़ा नहीं, इनको मता दी, इनको भी, इनके आबाओ अजदाद को भी। ये उन नेमतों का जिक्र यहाँ पे हो रहा है जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर की हुई थी, हत्ता कि इनके पास हक आ गया। अब तो हक आ गया, अब तो कुरान आ गया, वही आ गई, अब तो एक रसूल आ गया जो बात को बयान करने वाला है, अब तो ये सीधे रास्ते पर आ जाए। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना तरीका छोड़ा था, अपना नमूना छोड़ा था, अपनी एग्जाम्पल छोड़ी थी, अपने पैगाम को छोड़ा था, अपनी वसीयत की भी थी, इन्होंने उसको छोड़ के शिर्क अपनाया, फिर भी अल्लाह ताला ने इनको अता किया, बहुत नेमतें अता की, लेकिन जब रसूल आ गया तो हुज्जत तमाम हो गई, हुज्जत तमाम हो गई, अब हक आ गया, कुरान भी आ गया, रसूल वो जो रसूल मुबीन है, जिसने वाजे तौर पे बता दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो चीज भी तुम्हें जन्नत के करीब करने वाली है मैंने तुम्हें बता दी है, और जो जहन्नुम के करीब करने वाली है मैंने वो भी तुम्हें बता दी है। कोई बात रह नहीं गई, सब चीजें क्लियर करके बता दी। तो इनकी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला इनको अता करता रहा और बहुत कुछ दिया। लेकिन जब याद रखें, किसी को अल्लाह ताला उसकी नाफरमानियों के बावजूद भी दे रहा हो, वो शिर्क कर रहा है फिर भी उसको बहुत नेमतें मिल रही हैं, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने इसको ढील दी भी है, जिसको कैसे कहते इस्तदराज, अलिफ सीन ता दाल रौ अलिफ जीम। इस्तदराज का मतलब होता है ढील देने के बाद फौरन पकड़ लेना, अचानक से पकड़ लेना। जैसे आप समझ लें कि कांटा डाला हुआ है ना आपने, तो मछली को कांटे में फंस गई है, अब वो तैर रही हो, समझ रही मैं आजाद हूं, लेकिन शिकारी किसी वक्त भी उसको खींच लेगा, और वो क्योंकि कांटा फंसा हुआ उसकी रीच में। जो नाफरमानी कर रहे हैं और उस पे भी उनको नेमतें मिल रही हैं, तो ये ज्यादा देर की बात नहीं होती, अल्लाह ताला ने बस ढील दी भी है समझे इनको। फिर अल्लाह ताला एक दिन ऐसा पकड़ता है कि उनको अचानक एक पकड़ आती है कि उनको होश भी नहीं आता। फिर तो उससे डरना चाहिए, इस चीज से मुतासिर नहीं होना चाहिए कि कोई नाफरमानी कर रहा है और उसको बहुत नेमतें मिल रही हैं, तो चलो हम भी ऐसे ही करें। नहीं, अल्लाह ने उसको ढील दी भी, और अल्लाह ताला पैगंबर भेज के, ये कुरान भेज के अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर देता है। जब पैगाम आ गया ना किसी के पास और आखिरी नबी आ गए, तो सबके लिए हुज्जत तमाम हो गई, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए अब कोई बहाना नहीं रह गया कि हमें पता नहीं था, हम क्या करते, हमारे पास भी कोई नबी आता तो हमें पता चलता। नबी आखिर जमा आ चुके और ये पैगाम महफूज तौर पे आप तक पहुंच चुका, अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी के ये कहने की हमें पता नहीं था, तुमने खुद आंखें बंद की। और अल्लाह ताला ने तो ये पैगाम भेज दिया था और तुम्हारे लिए हर जरिया अल्लाह ताला ने बना दिया कि इस पैगाम से रहनुमाई ले सको। वलम्मा जाअहुमुल हक, जब आ गया उनके पास हक यानी कि कुरान, कालू हाजा सेहरून, उन्होंने कहा ये तो जादू जादू है, वह इन्ना भी काफिरून, और हम तो साफ, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम तो इसका इनकार करने वाले हैं। देखें, एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं इसका इनकार करता हूं, मैं इसे बरी हूं, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये कुरान तो जादू है, हम इसका इनकार करते हैं। जादू क्यों कहा? इसलिए कि कुरान दिलों पे असर करता था, दिलों को बदल देता था, लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। वो कहते हैं ये तो जादू हो गया इनके ऊपर, इसको तो जो सुनता है वो उसके ऊपर असर हो जाता है। तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया ये कह के। लेकिन अगर काफिर अपने कुफर के ऊपर इतना पक्का हो सकता है कि वो ये कह दे कि मैं तो इसका इनकार करता हूं, तो एक मोमिन क्यों नहीं हो सकता जो कह दे कि मैं हर बातिल का इनकार करता हूं, हर हराम का इनकार करता हूं। ईमान तो जुर्रत देता है, लेकिन जब मुसलमान ही सब में अच्छा बनने के लिए, कूल बनने के लिए, सब में एडजस्ट होने के लिए और सब में तारीफें चाहने के लिए और इन रहने के लिए अपना दीन ईमान ही गिव अप करते, उसके पास क्या रह गया? काफिर कुफर में इतना पक्का हो सकता है, तो मोमिन को अपने ईमान में इससे ज्यादा पक्का होना चाहिए कि वो इनकार करे और जुर्रत के साथ करे कि मैं नहीं मानता इन चीजों को। वकालू लौला नुज़िला हादल कुरान वला रजुल मिन अल-क़रयतैन अज़ीम। वो उन्होंने कहा क्यों नहीं नाजिल हुआ ये कुरान ऊपर किसी शख्स के, मिनल करियातईन, ताइफ और मक्का की बस्तियों मुराद हैं, ये दो बस्तियां थी। अजीम कोई अजमत वाला, सिफत रजुल की है, ये करिया की नहीं है, करिया बस्ती अजीम हो वो नहीं, रजुल किसी अजीम आदमी के ऊपर, इन दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी के ऊपर क्यों नहीं नाजिल हुआ? यानी अब जो अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजिल करना है यानी पैगंबर बनाना है, तो वो भी इनकी मर्जी से बनाया जाए जिसको ये बड़ा समझते हो। वो कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बनाया गया, इतने बड़े बड़े सरदार बैठे रह गए और ये दुर्रे यतीम। ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरे पास पैगाम आता है। तो अगर अल्लाह ने कुरान नाजिल करना ही था, इससे पता चलता है कि कुरान का ये नाम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी वाजे फरमाया कि इसका नाम कुरान है। यह कुरान किसी ऐसे शख्स के ऊपर क्यों नहीं उतरा जो बड़ा आदमी हो, जो ताइफ का सरदार होता या मक्का का सरदार होता। उन्होंने क्या देखा था? पैसा, बड़ी शख्सियत होती, बड़ा नामवर होता, बहुत बड़े मर्तबे वाला होता, जिसकी आगे पीछे को गुलाम हैं, जिस जिसकी बड़ी सरदारी है। वो ये समझते थे कि ये चीज है जो चुनाव के लिए जरूरी है। वो ये समझते थे कि कोई बड़ा आदमी होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए बड़ा आदमी होना क्या था, उसका मेयार क्या था, माल या सरदारी। इखलाक और किरदार नहीं था। अखलाक और किरदार में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मक्का जानता था कि सादिक और अमीन है, लेकिन उनके लिए ये चीज कुछ भी हैसियत नहीं रखती थी। उनके लिए बड़ाई किसमें थी, जैसे आज हमारे नजदीक है, कोई नेक है, कोई दीन वाला है, उसकी परवाह नहीं है। अब कोई बेटी का रिश्ता भी करने जाए तो वो भी ये नहीं देखता कि दीन किसी का क्या है, देखता है माल कितना है, पैसा किधर है, जॉब कितनी बड़ी है, क्योंकि हमारे नजदीक भी बढ़ाई का मेयार यही रह गया। क्या अल्लाह ताला के नजदीक ये मेयार है? फर्क है ना हमारे मेयार में और अल्लाह ताला के मेयार में। वो किसको चुनता है? वो माल देख के नहीं चुनता, वो सरदारियां देख के नहीं चुनता, बल्कि हदीस में आता है अल्लाह ताला ने बनू आदम के दिलों को देखा तो उनमें बेहतरीन दिल, बेस्ट दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो अल्लाह ताला ने उनको अपना नबी चुना। और फिर अल्लाह ताला ने उनके बाद दिलों को देखा, उनके बाद सहाबा के दिलों को सबसे बेहतरीन पाया तो उनको चुना। और सहाबा भी सारे कोई बहुत ज्यादा कम ही थे जो कोई कोई ज्यादा मालदार थे, ज्यादातर तो गरीब ही थे, मुफलिस थे। तो अल्लाह ताला इसका मतलब ना माल देखता है, अल्लाह ताला को इससे परवाह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, ना ये कि आपकी कितनी शोहरत है, आपके कितने फैंस हैं, आपकी कितनी फॉलोइंग है, या आप कितने बड़े लीडर हैं, या कितनी बड़ी कुर्सी है आपके पास, या कितनी हसीन है आप, बल्कि अल्लाह ताला क्या देखता है, दिल देखता है। क्या दिल हमारे ऐसे हैं? चाहे नबुव्वत हो या दीन की खिदमत हो, उसके लिए मयार क्या है? सहाबा को अल्लाह ताला ने किस बात पे चुना था? दिल देख के, उनके भी माल नहीं देखे, उनको चुना अपनी दीन की खिदमत के लिए। तो अल्लाह ताला हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला ना तुम्हारे माल देखता है ना तुम्हारी शक्लें देखता है, वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिल देखता है। और वो ही हमारे पास नहीं होते। हमारा फोकस किस चीज पे होता है? ज्यादा तवज्जो किधर होती है? किसको ज्यादा संवारने और ज्यादा बढ़ाने की हमारे अंदर चाहत होती है? माल बढ़ जाए और शक्लें अच्छी हो जाए, लेकिन दिल कैसे है या अमल कैसे है, उस तरफ फोकस ही नहीं। तो अल्लाह ताला की ये तकसीम है, और उसकी तकसीम किस बेस पे होती है, ये किसका दिल कैसा है, उसको स्टेटस से हमारे कोई लेना देना नहीं। वो तो उसने खुद दिया है, पैसे से कोई लेना देना नहीं, वो भी उसने खुद अता किया है। तो वो अल्लाह ताला की जो सिलेक्शन है ना, उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, उसके ऊपर मुतमईन नहीं है, उनके नजदीक किसी और को सेलेक्ट होना चाहिए था। आज भी हम भी ये सोचते हैं कि आगे आ रही है रिस्क की बात, माल की भी बात, हम ये सोचते हैं इसको इतना मिलना चाहिए था, उसको क्यों मिल गया, इतना ज्यादा क्यों उसको मिल गया, या इसको क्यों नहीं मिला, ये इसको कम क्यों मिला हुआ। हम भी तो मुतमईन नहीं होते ना, अल्लाह की तकसीम पे आगे ये बात आ रही है, अहम यकसीमून रहमत रब्बिक, क्या वो तकसीम करने करते फिरते हैं अल्लाह की रहमत को, तेरे रब की रहमत को? इनके हाथ में क्या तकसीम है, ये क्या सेलेक्ट करेंगे, ये बताएंगे अब अल्लाह ताला को कि किसको आपने सेलेक्ट करना है अपने नबी होने के लिए, ये बताएंगे? इनके इतराज का जवाब एक्चुअली दिया जा रहा है कि ये इतराज कर रहे ना, उनको होना चाहिए था, इन सरदारों को नबी बनना चाहिए था, उनको छोड़ के इसको क्यों नबूवत मिल गई? तो तुम अब अल्लाह ताला को बताओगे कि किसको नबूवत मिलनी चाहिए? क्या ये रिसालत की जो तकसीम है इनके हाथ में है, या इनके मशवरे से अल्लाह ताला करे, नाउज़ु बिल्ला, अल्लाह को ज्यादा पता है या इनको? अल्लाह आलमु हैसु यजालु रिसाला था, अल्लाह को पता है कि कहाँ पे उसने अपनी रिसालत भेजनी है। और यहाँ पे नबुवत को कहा गया रहमत रब्बिक, तेरे रब की रहमत, तो अल्लाह ताला को इनका मशवरा नहीं चाहिए? नहनु कसमना बैनहु मईशत हम फिल हयात दुनिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी की मईशत भी अल्लाह तकसीम करता है, ठीक है? यानी क्या मतलब है यहाँ पे, यानी दुनिया की जो चीजें हैं, माल दौलत नेमतें, ये तो मता है इस दुनिया का, ये तो हकीर चीजें हैं इस दुनिया की, इनकी तकसीम भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, किसी के कहने पे नहीं कि किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितना मालदार करना है, जिसके पास कितना होना चाहिए, ये तकसीम जब अल्लाह ने अपने पास रखी इस हकीर दुनिया की तकसीम, तो नबुव्वत जो इतनी आला चीज है उसकी तकसीम क्या इनके हाथों में होनी चाहिए? बात समझ आ रही है? यानी ये दुनिया का रिस्क भी अल्लाह ताला ने इनके हाथ में नहीं रखा, जो कि छोटी चीज है, मामूली चीज है, तो नबुवत का काम इनके हाथ में अल्लाह ताला रखता कि ये बताएंगे। और यहां से ये हमें पता चला कि दुनिया की मईशत, मईशत का मतलब क्या होता है, साजो सामान, गुजर बसर के जो जराए होते हैं, जिनसे जो प्रोविजन जिसको कहते हैं, गुजर बसर जिससे होती है इंसान की, तो ये सब अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, ये अल्लाह की तकसीम है। और जब हम इस तकसीम पे राजी नहीं होते, उसको प्रमोशन क्यों मिल गई, उसकी दुकान इतनी क्यों चलती है, उसके पास इतने ग्राहक क्यों आते हैं, मेरी जॉब छोटी क्यों और उनकी बड़ी क्यों, और इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, और इससे हसद करते रहना, और इनके पास तो बहुत कुछ है, देखो इनके पास ये भी, जलते भुनते कुड़ते रहना। और जब भी किसी के पास कुछ ज्यादा माल आ जाए तो उसके ऊपर भी परेशान रहना और चैन ना आना, तो ये किस चीज से आप राजी नहीं हो रहे? ये नहीं कि उस बंदे से राजी नहीं हो रहे, असल में हम फिर अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं हो रहे। क्या ये अच्छी बात है कि हमें अल्लाह की तकसीम के ऊपर एतराज हो? क्या ये अच्छी बात है कि हम अल्लाह की तकसीम पे राजी ना हो? जिसको जो मिला हुआ है, जो गुजर बसर का यहाँ पे सामान मिला हुआ है, किसने दिया उनको? अल्लाह ताला ने ना? क्या हम सोचते हैं कि कोई खुद भी अपनी तदबीर से, अपनी तालीम से, अपनी या और कोई वसाइल थे उसके पास, उनसे हासिल कर सकता है? नहीं, कुल्ली तौर पे अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हदीस में आता है ये यकीनन अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है और अखलाक भी तकसीम करता है, ठीक है? ये अभी मैं आप आगे इस हदीस को और बताती हूँ, लेकिन पहले ये बात सुन कि रिस्क तकसीम अल्लाह करता है। और जिस वक्त हम इस चीज के ऊपर बेचैन होते हैं और हमें अंदर बस एक बेकली सी लगी होती है, क्यों इनको मिल गया, क्यों इनको, किसके पास क्यों है ये, उसके उसके पास ये क्यों आ गया, वो क्यों, बड़ी गाड़ी क्यों है, बड़ा घर क्यों है, उसके तो सारी चीजें अच्छी क्यों है, तो हम दरअसल अल्लाह ताला की तकसीम पे नाराज हो रहे होते हैं। ये नाराजगी अल्लाह ताला के ऊपर एतराज है, ये नाराजगी अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी ना होना है, और ये भी गुनाह है। लिहाजा जब किसी के पास कुछ भी हो तो उसके ऊपर यही सोचे, अल्लाह ने इसको दिया, अगर आपका दिल चाहता है कि मुझे भी मिले, अल्लाह ताला तूने उसको अता किया तो मुझे भी अता फरमा, मगर दूसरों से हसद ना करे, दूसरों की चीजों को देख के और उसके बाद बेचैन ना रहे, परेशान ना रहे, और ये ना सोचे कि इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए था, इनको क्यों मिला हुआ, फलां को मिलना चाहिए था। अब ऐसे ऐसे बड़े कई नाफरमान है अल्लाह के, हम सोचते हैं इनको क्यों मिला, इनको तो इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि इसको मिलना चाहिए या नहीं, अल्लाह ने दिया वह उसकी हिकमतें, उसको पता होगा क्यों दिया है। और वो जो एक बेचारा गरीब है, वो इतना शरीफ आदमी है, असल तो उसके पास होना चाहिए था। नहीं, मुझे मैं नहीं जानती उसका किस में इम्तिहान है और इसका किस में इम्तिहान है, तो ऐसे इतराजात भी नहीं करने। तो इस हदीस को अब आगे लेके चलते हैं कि अल्लाह ताला तकसीम करता है तुम्हारे दरमियान रिस्क भी और अखलाक भी, और आगे देखें बहुत प्यारी बात है, बेशक अल्लाह ताला दुनिया तो उसको भी देता है जिससे वो राजी होता है और जिससे नहीं राजी होता, या जिससे वो मोहब्बत करता है और जिससे नहीं मोहब्बत करता, मगर दीन सिर्फ उसको देता है जिससे मोहब्बत करता है। इसीलिए जब भी मेरे सामने कोई रिवर्टेड लोग आते हैं तो मैं बस एक बात दिल के अंदर होती है, ला तू उनसे कितनी मोहब्बत करता होगा कि तूने इनको कुफर और शिर्क में से निकाल के तौहीद के जैसी नेमत अता फरमा दी, क्योंकि तू इनसे मोहब्बत करता ही होगा तो इनको ये दिया। तो रिस्क अल्लाह सबको ही दे देता है, जिससे मोहब्बत करता है जिससे नहीं भी करता। देख लेना आप, कई नेक लोग हैं बहुत मालदार भी हैं, कई काफिर हैं, फासिक फाजिर हैं, वो भी बहुत मालदार हैं। तो ये जो रिस्क है दुनिया का, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इस बात का कि अल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत करता है। कई पैगंबर देखे आप, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाहतों के मालिक थे। कई पैगंबर हैं कि आप जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाकों पे जिंदगी गुजारी, तो ये कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम किसी को नापें कि पता नहीं अल्लाह को इससे मोहब्बत है और इसको देखो इतना दिया हुआ है। हम यही सोचने लगते ना, पता नहीं ये इसके तरीके अच्छे ही होंगे, पता नहीं यही अच्छा है तभी अल्लाह इसको दे रहा है इतना। नहीं, हाँ, मगर जब आप दीन में किसी को देखे ना तो फिर समझ जाए कि अल्लाह को जरूर मोहब्बत ही है। मगर देखा पैगंबरों के पास दीन था, फिर वो स्टैंप है इस बात की कि अल्लाह को जरूर मोहब्बत है। तो हम इस हदीस से हमें पता चलता है कि जो दीन की खिदमत भी है और जो अल्लाह की पसंद के काम भी हैं, उसकी मर्जी के काम भी हैं, जो नेकियां भी हैं, वो भी अल्लाह ताला उन तौफीक देता है उन्हीं को जिनसे वो मोहब्बत करता है। अब देखे ना हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता है। तो भलाई का इरादा ही है आपके साथ अल्लाह ताला का, मोहब्बत ही है अल्लाह ताला की जो आपको इस तरफ लेकर आए, वो आपको दीन देता है, ईमान देता है, ये सब नेमतों से बड़ी नेमत है। फिर फरमाया वरफाना बादाहुम फौक बादिन दराजातिन, और अल्लाह ताला ने बाज को बाज भी दर्जे दिए। दर्जे दिए मतलब क्या, किसी को कोई चीज ज्यादा दी, किसी को कोई चीज कम दी, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को अंधा बनाया, किसी को देखने वाला बनाया, किसी को बहुत जीनियस बना दिया, किसी कोई बेचारा बिल्कुल ही कुंद ज़हन है, किसी का दिमाग चलता है किसी का चलता ही नहीं है, किसी को हुकूमत दी किसी को नहीं दी, किसी को किसी बड़े खानदान के अंदर पैदा फरमा दिया, किसी को किसी और खानदान में पैदा फरमा दी। तो बंदों के मुख्तलिफ दर्जात हैं, वो हर चीज के अंदर, चाहे वो दौलत है, मालो दौलत है, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत है, जहनी कुव्वत है, चाहे वो इल्म है, कोई बड़ा साइंसदान है, कोई बिल्कुल ही उसको कुछ आता जाता नहीं, बिल्कुल जाहिल है, तो सलाहियतों में भी सबको डिफरेंट रखा, कद काठ में, शक्लों में जैसे सब डिफरेंट है, इस तरह बाकी चीजों में भी एक जैसे सब नहीं है। तो क्यों, लियत्तखिज़ बादुहुम बादन सुख्रिया, ताकि बाज को बाज का खिदमत गुजार बना दे, बाज को बाज का खिदमत गुजार, यानी एक दूसरे से काम लेना, एक दूसरे से खिदमत लेना तभी पॉसिबल था ना जब ये फर्क होता। अगर सारी दुनिया को बादशाह बना देता, अगर मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा पानी, मेरा काम कौन करता? तो ये भी एक हिकमत थी अल्लाह ताला की कि ये फर्क अल्लाह ताला ने रखा। तो अगर बंदों के पास इख्तियार दे दिया जाता, तो आप सिर्फ इतना देख लें, ये विरासत है ना, जब हम अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक नहीं विरासत को तकसीम करते तो होता क्या है? उसके बाद कोर्ट कचहरियां, एक दूसरे से बातचीत बंद, कतअ ताल्लुक, कतअ रहमी, और सब दूसरे से जेलस और दुश्मनियां, क्या कुछ होता है? क्योंकि अब हमने तकसीम को अपने हाथ में ले लिया। मैं बताऊंगी कि किसको कितना मिलना चाहिए, और तब यकीनन नाइंसाफियां होती हैं। तो याद रखिए, अल्लाह ताला की तकसीम जो है उसके ऊपर राजी रहना सीखना है। और ये भी पता चलना चाहिए कि समझ आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये फर्क रखे हैं, लेकिन इन फर्क को रखने के अंदर ये नहीं कि वो किसी से राजी है और किसी से नहीं राजी है, तो उसको एक को अंधा बना दिया तो उससे नहीं राजी है, जिसको आंखें दी हुई हैं उससे अल्लाह बड़ा खुश है, जिसके पास पैसे हैं वो उससे अल्लाह बड़ा खुश है, जो गरीब है बतनी इससे खुशी नहीं है। नहीं, ये नहीं है। एक ही माँ बाप की औलाद होती है, आप देखें किस्मतें कैसी कैसी होती हैं। एक बच्चा है वो, यानी हम अपने सामने देखते हैं, ये आप लोगों ने भी यकीनन देखा होगा, एक घराने को हम एक बहन भाई को देखते हैं, दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता है, उसमें भी मोहताज होते हैं। दूसरे के पास इतना है कि उसके कुत्ते भी गोश्त खाते। तो ये बस अल्लाह की तकसीम है। एक है दो लोग एक साथ दुकान खोलते हैं, एक है उसके ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, उसके पास फुर्सत नहीं है, दूसरा वो सारा दिन मक्खियां मारता रहता, कोई आता ही नहीं। ये किसकी तकसीम है? ये नहीं कि उसके पास कोई बहुत आइडिया, कोई बड़ा ऐसा था, हम तो ये सोचते ना ये तो बहुत जीनियस, ये तो बहुत बड़ा, इसको समझ है, सारी समझें पीछे रह जाती हैं जब अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहता ही है, कोई अल्लाह की कोई मशीयत होती है, अल्लाह ताला ने उसको देना है तो उसको वो अकल भी आ गई, वो समझ भी आ गई, उसने ये कदम भी उठा लिया। तो ना कोई मालदार अकड़े और ना कोई गरीब जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, ना कोई मालदार अपने आप को बहुत अकलमंद समझे, और ना कोई बेचारा गरीब जो रह गया वो कहे कि हाय पता नहीं मेरे अंदर ही कोई अकल में कमी है, या पता नहीं मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, एक ही क्लास में होते हैं दो लोग, एक ही डिग्री उन दोनों के पास होती है, क्या एक जितना उनको मिलता है? एक बाहर निकलता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है, और दूसरा एक ही लेवल पे रहता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो अकलमंद बहुत ज्यादा था, वो पहले शुरू से ही ऐसे था, वो किसने अकल दी थी? अल्लाह ताला ने उसको वहां पहुंचाना था, इसलिए उसको वो अकल भी दे दी, वो कदम भी उससे उठवा दिया। तो इस जहन में रखें कि ये अल्लाह की तकसीम, बस हमने इस पे राजी रहना, और ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए किसी को भी कि ये पैमाना किसी को भी जज करने का। और फिर फरमाया, और रहमतु रब्बी का खैरु मिम्मा यजमाउन, लेकिन ये याद रखो अल्लाह ताला की रहमत ना बेहतर है इस सब से जो ये जमा करते हैं। तो अल्लाह की रहमत से मुराद क्या है यहाँ पे? एक तो ये बात जो पहले आई है कि जो नबुवत अल्लाह ताला ने दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपका आना बतौर रहमत के है, ये हर चीज से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत रिसालत ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मबूस फरमाए गए, इतनी बड़ी रहमत है, इतना बड़ा अल्लाह ताला का फजल है, हर उस चीज से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अल्लाह की रहमत एक जेनेरिक उसके अंदर भी लिया जाए, तो अल्लाह की जो रहमत है वो बेहतर है उससे जो जमा करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला अता करता है वो इंसान की कोई भी कोशिश वो कर रहा है जमा करना कोई भी, उससे ज्यादा अल्लाह की रहमत बेहतर है। नहीं, इंसान लिमिटेड कर सकता है ना, उसकी कोशिश लिमिटेड होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो अपनी रहमत से अता फरमाता है वो बहुत ज्यादा होता है उसके मुकाबले में। اور فرمایا ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها. اب اچھا ابھی بتایا گیا نیت کہ یہ جو لوگ جمع کرتے ہیں چیزیں یا لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہے یا جو یہ چیزیں ہیں نا یہ بہت حقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ کی جو رحمت ہے وہ زیادہ عظیم ہے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو آخرت میں ملنے والی چیزیں ہیں ان کی عظمت بھی بتائی گئی کہ یہ جو دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں اسے بہت بہتر ہے اللہ کی رحمت جو یعنی آخرت میں جنت کی صورت میں ہوگی اور وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ بہت زیادہ بہتر ہیں اسے جو یہاں پہ جمع کرتے ہیں لوگ. اب وہ پتہ نا قرآن کے بارے میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہ وہ بہت بہتر ہے اسے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور لوگ کیا کچھ جمع کرتے ہیں, پیسہ جمع کرتے ہیں اور کوئی کوئی چیزیں دنیا کی حقیر چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں, کوئی کپڑے جمع کر رہا ہے, کوئی زیور جمع کر رہا ہے, کوئی کوئی چیز کسی چیز میں لگا ہوا ہے, کسی کو کسی چیز کا شوق ہے, لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس سب سے. اور یہ بھی کہ یہ قرآن بہت بہتر ہے اس سب سے, جیسے سورہ یونس میں آیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان سب چیزوں کے مقابلے میں بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. اور اگر لوگ یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت بن جائیں گے, ایک امت بن جائیں گے کا مطلب کیا, یعنی یہاں پہ ایک امت بننے کا مطلب ہے سارے ہی کافر ہو جائیں گے, سارے کفر اختیار کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا اگر یہ ڈر نہ ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ, تو ہم کر دیتے اس کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتا ہے, کیا کر دیتے ان کے لیے, لِبُيُوتِهِمْ سُقُفُمْ, ان کے گھروں کی چھتوں کو, من فِدَّتٍ چاندی کی, اور ان کی سیڑھیاں اس پر بھی کیا ہوتا جس پر وہ چڑھتے ہیں, ولی بُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا, اور ان کے گھروں کے دروازوں کو, وَسُرُورًا, اور تخت, عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, جس پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں, وَزُخْرُفًا, اور سونے کے, چاندی کے اور سونے کے, کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بنا دیتا, ان کے گھروں کی چھتوں کو بنا دیتا چاندی کی, ان کی سیڑھیاں, دیکھے جو بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں وہ کتنے مطلب اس کے اندر جب آپ جیسے دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ وہ دکھاتے ہیں جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جی, ان کے جہاز ہیں اور اس کے اندر جو نلکے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں, اور ان کے محل ہیں ان کے اندر بھی سونے چاندی کی چیزیں ہیں, اکثر دکھاتے رہتے ہیں کہ ان کے ایون باتھ روم کی چیزیں بھی سونے چاندی کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیزوں کو تم بڑا سمجھتے ہو اور ان کے اوپر تم ریجتے ہو اور ان کو ہی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو اور اس کی بیس کے اوپر لوگوں کو جج کرتے ہو اور ان کو سمجھتے ہو کہ اس کے پاس بہت ہے, یہ اللہ کے نزدیک اتنا حقیر ہے, اتنا حقیر ہے کہ اگر یہ ڈر نہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر بن جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ان کافروں کو دے دینا تھا, ان کے گھروں کی چھتیں بھی اللہ نے سونے کی بنا دینی تھی, اتنا ان کو دینا تھا کہ ان کے دروازے بھی سونے چاندی کے ہوتے اور ان کے جو تخت بھی سونے چاندی کے ہوتے اور ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوتی, یہ بتانا کیسے. اچھا میں آپ کو ایک مثال سے بتاتی ہوں پھر آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ آئے گی. اچھا آپ کے گھر میں گاربیج ہے, ٹریش ہے, ٹھیک ہے, کوڑا کرکٹ ہے. اب وہ کوڑا کرکٹ اگر کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے لیے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہاں کوئی آپ کے لیے کوئی کرسی مانگے, صوفہ مانگے, شاید آپ کہیں کہ نہیں میں کیوں دوں, یا کوئی آپ کے کپڑے مانگے تو آپ کے لیے ان کی کوئی ویلیو ہے تو آپ کہیں کہ میں کیوں دوں, شاید آپ کہہ دیں. لیکن اگر آپ سے کوئی کوڑا مانگتا ہے آپ کے گھر کا تو آپ کہیں گے ارے میں نے نہیں دینا یہ کوڑا, آپ کہیں گے سارا ہی لے جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں, گاربیج ہے تو سب ٹریش ہے, یہ کیا چیز ہے, میرے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو آرام سے دوسرے کو دے دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی ساری چیزیں ٹریش ہیں. نہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کا پر آپ دیکھیں, مچھر کی کیا کی قدر و قیمت ہے, کچھ ہے
कुछ भी नहीं है, ऐसे हाथ से आप उसको मार देते, कुछ भी नहीं है वो। ऑन टॉप ऑफ मच्छर नहीं कहा गया, मच्छर के भी पर, मच्छर के पर कितना हकीर होगा, अगर मच्छर है ऐसे इतनी हकीर सी चीज, तो उसका पर कितना छोटी चीज है। अगर अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती इस दुनिया की कीमत, यानी इतनी भी नहीं है, इस समझ समझे आप इस बात को, इतनी भी नहीं है, अगर इतनी भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। मीन्स कि इतनी भी नहीं है, इसीलिए तो काफिर आज पैसे में खेल रहे हैं, दौलत में खेल रहे हैं, इसमें खेल रहे हैं, इतनी सी भी नहीं है अल्लाह के नजदीक इसकी कदरों कीमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था, आपने फरमाया इसको कौन खरीदेगा, लोगों ने कहा ये तो कन कटा था, लोगों ने कहा ये तो जिंदा भी होता कोई ना इसको खरीदा, इसके अंदर तो ऐब है, वो अब तो ऐब वाला भी है और मुर्दा भी है। आपने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया की कदरों कीमत इतनी भी नहीं है। और ये मच्छर वाली बात से आप ज्यादा समझ सकते कि इतनी भी नहीं है, वरना अल्लाह ताला अगर इतनी सी भी होती ना, इतनी सी भी, तो अल्लाह ताला एक काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। लेकिन आप देख रहे हैं ना काफिरों को, पानी क्या, उनके पास तो बहुत कुछ है। तो इसका मतलब अल्लाह ताला के नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है, जरा सी भी इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। और ये यहां पे बताया गया, अगर ये डर ना होता कि लोग सारे काफिर ही हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग देखेंगे अरे इनके घर सोने के, इनके अभी इतने मुतासिर रहते हैं, अभी तो सारे काफिरों के पास ऐसी भी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये डर ना होता कि ये सारे ही काफिर हो जाएंगे, इन्होंने क्या ना, ये तो भाई पता नहीं कुफर ही अच्छी चीज है, क्योंकि देख लो ना ये काफिर हैं और इनके पास कितने सोने चांदी, और इनके महलात देखो, और इनके पास, हम भी सारे काफिर हो जाते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये डर ना होता तो अल्लाह ताला काफरों को इतना कुछ दे देता, उनके ऊपर दरवाजे खोल देता, सोने चांदी के होते हैं इनके बाथरूम और उनके नलके और टॉयलेट्स भी, इनकी सीढ़ियां और इनके दरवाजे और इनके सब चीजें सोने चांदी की होती हैं। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि उसने इनके ऊपर दुनिया की दुनिया नहीं खोल दी सारी की सारी। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा कर देता तो एक मुसलमान तो बड़ा इम्तिहान में पड़ जाता, उसने कहना था बस भाई ये ईमान में क्या मिलता है, इसको तो छोड़ो, दुनिया तो वहां पे मिल रही है, उधर को भागो। हालांकि अल्लाह ताला ने ये नहीं किया, तब भी आज ये हाल है, अभी अल्लाह ताला ने इनको इतना नहीं दिया काफरों को, तब भी ये आज हाल है कि एक मुसलमान जो है रीझा जाता है कि हाई देखो इनकी तरक्कियां कितनी, वेस्ट ने बहुत तरक्की कर ली, पता नहीं कुफर की वजह से की होगी, नंगे होने की वजह से की होगी, और इसे डेटिंग कल्चर जो है इसकी वजह से की होगी, क्योंकि ये शादियां ही नहीं करते, ये बच्चे ही नहीं पैदा करते, क्योंकि ये नंगे फिरते हैं, क्योंकि ये शिर्क करते हैं, क्योंकि ये बस कोई अल्लाह की हदों को नहीं है, क्या हमारे दीन ने हमें क्या दिया, इस्लाम ने हमें क्या दिया, ये मौलवी तो ऐसे ही बस, देखो इनकी वजह से हम पीछे रहे हैं, देखो वेस्ट कहां से कहां पहुंच गया, देखो उन लोगों के तरीके क्या, उनके सारा गंद लेके खुद अपना अपना लिया, और सारा इल्जाम के कि हम ये इसकी वजह से पीछे रहे हैं, ये बस ऐसा हम अल्लाह तौबा बस ये करते रहो, इनका तो यही काम है, देखो ना इस वजह से हमने तरक्कियां नहीं की, तरक्की करनी है तो उनके जैसे बनो, और उनके जैसे बनने में कोई और तरीका नहीं उनका अपनाया, बस नंग धड़ंग को अपनाओ, बेहयाइयों को अपनाओ, और ऐसी चीजों को अपनाओ कि जैसे मादर पिदर आजाद हैं, जिसमें ना कोई शादी करे ना कोई कुछ, लिविंग टुगेदर अपनाओ, मर्द और औरत कोई एक आपस के अंदर ताल्लुक नहीं है, लेकिन बेहयाई के काम सरेआम कर रहे हैं, वो उन चीजों को अपनाओ, उनके जैसा हर चीज हमारी होनी चाहिए, कल्चर उनका होना चाहिए, उनका हर मामले में उनके पीछे चलोगे तो तब हम भी तरक्की करेंगे। अभी हालांकि अल्लाह ने सब कुछ इनको नहीं दिया, अभी अल्लाह ताला ने किसी ईमान वालों को ऐसा नहीं कर दिया कि वो बिल्कुल नीचे दुनियावी नेमतों में हो जाए, और ये इनको इनके सोने की चांदी की हर चीज हो, अभी ये नहीं है, तब भी ये हाल है। और अगर कहीं सारे काफरों को ये सब कुछ मिल जाता तो ईमान वालों ने तो अपना ईमान तो इधर फेंकना था, उन्होंने कहना था चलो उनकी तरफ, हम भी वहां जाएंगे तो हमें भी ये मिलेगा, तो ये तो अल्लाह की रहमत है, वरना बड़ा इम्तिहान हो जाता, जबकि हम अभी भी सुधर नहीं रहे, अभी भी हम उनके ऊपर कैसे हमारे दिल उनकी तरफ लपकते हैं और ऐसे उनके चीजें पसंद आती हैं, जैसे कि यही चीजें तरक्की की सीढ़ी हैं, यही चीजें हैं जिनसे तरक्कियां मिलती हैं, इसी कुफर और शिर्क और बिल्कुल आजादी जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसी से शायद तरक्कियां होती हैं। तो हम भागे जा रहे हैं उनकी तरफ, जबकि वो खुद भी रिसर्च करके कहते हैं कि इन चीजों की वजह से हमारे माशरों में जवाल आया, इनकी वजह से आज ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने बाप का ही पता नहीं है, हमारे इन तरीकों की वजह से औरत को घर से बाहर निकालने की वजह से नस्लें तबाह हो गई हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ये अच्छे तरीके हैं क्योंकि इसी से तरक्कियां होती हैं। तो हम रोंग हैं, अल्लाह ताला देखे बता रहे हैं कि अगर ये सारे लोग एक उम्मत ना हो जाते, सारे लोग काफिर ना हो जाते, इस चीज का डर ना होता, तो अल्लाह ताला इनको सब कुछ ही दे देता। और सो इमेजिन करें जरा, अभी हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों से बहुत मुतासिर रहते हैं, हाँ देखो वो बिल गेट्स के पास क्या है, और देखो उसने शादी कैसी की फलाने है, और इनके पास अच्छा ये तो ऐसे हैं, ये तो कुफर पे हैं, ये तो शिर्क पे हैं, फिर भी इनके पास इतना है, पता नहीं यही तरीका सही होगा। तो नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने सब कुछ नहीं इनको दे दिया। अल्लाह अकबर, वा इन कुल्लु ज़ालिक लम्मा मताउल हयात दुनिया, और बेशक ये सब तो दुनिया की जिंदगी का सामान है, वल आखरत तो अंदा रब्बी का लिल मुत्तकीन, और आखरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकीन के लिए है, वल आखरत तो खैर व अबका, आखरत तो बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। लेकिन कौन समझाए ये हमें, ये कौन समझाए, हमने तो दुनिया की आराइश जेबाइश, इसके सामान, इसकी सारी जो जीनतें हैं, इनको सब कुछ समझ लिया और इसी के पीछे भाग रहे हैं अंधाधुंध। हम इसको हकीर तो नहीं समझते, हम वहां की तरफ भागते हैं, उन लोगों की तरफ भी भागते हैं जिनके पास दुनिया की बहुत सारा सामान होता है, वही हमें अच्छे लगते हैं, उन्हीं के साथ ताल्लुकात बनाने में हम फख्र महसूस करते हैं। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको वो हदीस बताई कि दुनिया तो अल्लाह काफिर को भी देता है और मोमिन को भी देता है, मगर दीन सिर्फ मोमिन को देता है, इससे मोहब्बत करता है, आखरत सिर्फ मोमिन के लिए। अब ये समझ लें कि दुनिया अल्लाह काफिर को भी दे रहा है, मोमिन को भी देता है, और आखरत सिर्फ मोमिन के लिए। और मता क्या आरजी फायदा है, तो दुनिया आरजी फायदा है, इसकी हर चीज आरजी है, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। और एक बड़ी खूबसूरत हदीस बड़ी पसंद है मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की मिसाल बताए कैसी है, सुभान अल्लाह, फरमाया दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे इब्ने आदम का खाना, जैसे हमारे खाने होते हैं ना वैसे, कैसे, देखिए सुभान अल्लाह कितनी प्यारी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, फरमाया खाने को जितना मर्जी लज्जतदार बना लो, जायकादार बना लो, लेकिन उसका अंजाम क्या है ये देखो कि उसका अंजाम क्या है, कितना ही आपने उसको डेकोरेट किया हुआ, बड़े बड़े खूबसूरत खाने होते हैं, बड़े सजे हुए, बड़ी तरीके के, बड़े जायकादार भी, लेकिन सबका अंजाम एक ही है, ये दुनिया हुआ। कोई अमीर है, गरीब है, कोई अंधा है या देखने वाला है, कोई जहीन है या कुंजे है, अंजाम तो सबका एक ही, खत्म हो जाना, मिट जाना। और आखरत बेहतर भी है, इससे बेहतर है, बेहतर है कि एक आखरत में एक हूर जो है उसका दुपट्टा भी दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे ज्यादा कदरों कीमत वाला है, एक दुपट्टा पूरी दुनिया से ज्यादा, और जो कुछ उसमें सारी दुनिया को कीमत बना के दे दे, तब भी उस एक दुपट्टे की आप कीमत नहीं अदा कर सकते, इतना कीमती है वो। लेकिन हम रीझे रहे इसी दुनिया के पीछे,
और इसी को सब समझ लिया। इसकी मुद्दत कलील है, मुद्दत भी कलील है, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। देखिए कितना जीना है यहाँ पे, कितना जी लेंगे, कितनी देर यहाँ पे रह लेंगे। जैसे फुज़ैल फरमाते हैं कि अगर दुनिया सोने की होती मगर इसको फना हो जाना, और आखरत ठीकरियों की होती, तब भी हमें चाहिए था कि हम फना हो जाने वाले सोने के ऊपर हमेशा रहने वाली आखरत को तरजीह देते हैं। इन्ना दारुल आखिरत ही अल हैवान, आखरत जो है उस वो उसका घर बाकी रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, दुनिया नहीं। दुनिया का तो कोई कंपैरिजन ही आखरत के साथ नहीं कर सकते ना। आप देख लें कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि समुंदर में अगर आदमी एक अपनी उंगली डबोता है और उसको बाहर निकालता है, तो जो पानी उंगली पे लगा रह जाता है वो दुनिया है, और आखरत उसके मुकाबले में वो समंदर है। तो कितनी बड़ी है आखरत और दुनिया कितनी छोटी है, ये पानी कितना सा है, इमेजिन करिए आपको बताने के लिए। अव्वल तो समंदर की भी एक हद होती है, आखरत की तो हद नहीं है, उसकी जिंदगी की कोई हद ही नहीं है कि कभी खत्म ही नहीं होनी। समंदर तो फिर भी कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ हमें समझाने के लिए कि हम समझ जाएं कितनी थोड़ी है ये दुनिया की मुद्दत। और हम खुद कहते हैं, हम अपनी, किसी और ने तो हमें क्या बताना है, हम खुद अपनी जुबानों से कहते हैं, हाय पता ही नहीं चला इतने साल गुजर गए, मैं 40 साल की हो गई, या मैं 50 या 60 70 साल के बंदे को भी पूछें, कहते हैं जिंदगी का पता ही नहीं चला किधर चली गई, तुझे जिंदगी ढूंढ के लाऊं कहां से। कहा वो इंसान उस वक्त सोचता है कि हाय कहां चली गई मेरे माहो साल, कहां चले गए। तो एक तो ये जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी कलील है, इसका पता भी नहीं चलता। 100 साल का बंदा भी पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है कल की बात है, और कयामत के दिन भी जाके इंसान कहेगा कि मैं तो एक दिन ठहरा था, दिन का कुछ हिस्सा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर ये जमीन सारी की सारी आसमान तक दानों से भर दी जाए, दानों से, ठीक है, जमीन से लेके आसमान जितना खला है दानों से पुर कर दिया जाए, और एक परिंदा हो जो एक दाना खाए फिर 1,000 साल के बाद दूसरा दाना खाए, फिर 1,000 साल के बाद तीसरा दाना खाए, इसी तरह 1,000 1,000 साल के बाद वो दाने खाए, तो कितनी प्यारी उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा ये दाने खत्म हो जाएंगे लेकिन आखरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। 1,000 1,000 साल के बाद एक दाना खा रहा है, और कितने दाने हैं जमीन से आसमान तक, तो ये दाने खत्म हो जाएंगे, आखरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसके लिए मेरी और आपकी तैयारी नहीं, वैसी नहीं जैसी करनी चाहिए। जिस जिंदगी ने खत्म ही नहीं होना उसके लिए क्या तैयारी है, और जो जिंदगी 4 दिन की है उसके लिए कितनी भागदौड़, कितनी मेहनतें हमारी लग रही हैं, हमारी कितनी सलाहियतें लग रही हैं, हमारी सोच और फिक्रें कितनी लग रही हैं उसके पीछे, हमारी प्लानिंग कितनी लग रही है उसके पीछे, हमारे शबो रोज की जो सोच है ना वो ही उसके पीछे ही भाग रही है। और फिर इसकी हर चीज जो है वो पुरानी हो रही है, और चाहे आप वो कपड़ा ले लें, चाहे आप वो घर ले लें, चाहे आप वो कोई गाड़ी ले लें, चाहे वो कोई भी चीज है जो भी आपके पास, पुरानी हो रही है, डी वैल्यू हो रही है उसकी। वो आप एक घर भी रखे तो 10 साल बाद उसका क्या हाल होता है, एक दिन तो बड़ा चकाचौंध नया नजर आता है, एक कपड़ा पहनते हैं जब खरीदते हैं उस वक्त कितना शौक होता है, उसके बाद 4 दिन के बाद उसी को फेंक रहे होते हैं, वो पुराना हो गया। इस दुनिया की हर चीज पुरानी हो रही है, यानी अपनी जवाल की तरफ को जाती है, जबकि आखरत की कोई चीज ऐसी नहीं होगी, हमेशा रहने वाली होगी, और पुरानी नहीं होना उसने। और उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कि एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा क्या होता है वो जिसे घोड़े को मारते हैं, इतना छोटा सा ही है ना, एक कोड़ा रखने की जगह भी जमीनों आसमान से बेहतर है। इतनी जबरदस्त है वो, जमीन पूरी और आसमान पूरा, इतनी सी जन्नत में जगह, इस सबसे ज्यादा बेहतर है। अल्लाह हू अकबर, तो आप बताएं कोई कंपैरिजन है? लेकिन इसके बावजूद हम सौदा किसका करते हैं? अच्छा, अगर आपके सामने एक सौदा रखा जाता है, आप वो कहें कि एक जगह पे जमीन है, बड़ी अच्छी जमीन है, लेकिन अगले साल ना उसके ऊपर पानी आ जाएगा, वो जमीन खत्म हो जाएगी, हुकूमत ले लेगी वो। आपके पास वो भी है, बहुत अच्छी लोकेशन, बड़ी अच्छी है, ये है, लेकिन वो हुकूमत ने ले लेनी है और उसके ऊपर पानी आ जाना है और वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक और जमीन है, वो है आपके पास ही रहेगी, आपके अगली नस्लों तक जाएगी, आप किसका सौदा करेंगे? वो जो खत्म हो जाने वाली है या जो बाकी रहने वाली है? इंसान नेचुरली कहता है कि नहीं, ये वाला सौदा तो चाहे कितना ही अच्छी लग रही हो मुझे आज ये, लेकिन जब मेरे पास रहनी नहीं, क्या फायदा इसका, इसको मैं क्यों खरीदूं? जबकि वो जो हमेशा रहने वाली है, अगली मेरी नस्लों तक भी जाएगी और मेरी ही मिल्कियत होगी, मैं उसका सौदा क्यों ना करूं? आप इसी तरह देख लें, किराए का घर और एक आपका अपना घर। आप हालांकि अपना भी अपना कहाँ रहता है, वो भी चला जाता है इंसान के हाथ से, लेकिन फिर भी किराए के घर के लिए इंसान कुछ करता है तरद्दुद, मैं इसको बड़ा, इसके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट करूं, इसके ऊपर ये कर दूं, वो कर दूं, इसको पूरा यानी रेनोवेट करूं, इसके पास कहता मेरा है ही नहीं है तो क्या फायदा, जब अपना घर होगा ना तो उसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे, इसके ऊपर क्या फायदा, ये तो मेरा ही नहीं, इससे तो मैंने कल को चले जाना। जिस दिन मालिक मकान कहेगा यहां से मूव होना पड़ेगा, जिस दिन वो कहेगा खाली करो, उस दिन खाली करना पड़ेगा, वो कभी भी कह सकता है। तो मेरा फायदा क्या, मैं यहां पे लगाऊं? किसी को देखा है वो होटल के कमरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे? क्यों नहीं करते? वहां से तो चले जाना, कौन पागल होगा जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा? ये दुनिया का हाल ऐसा ही है, जब मालिक कहेगा वहां से निकलना है, मूव हो जाना, फिर भी हम इसमें इन्वेस्ट इतना करते हैं, इसी के अंदर हमारे दिल लगे हुए, इसी के अंदर हमारी एनर्जीज लग रही हैं, जहन सारा इसके लिए लगा रहे हैं, इतना भाग भाग के पागल हो रहे हैं। हालांकि ये उस होटल के कमरे की तरह है, या उस किराए के घर की तरह है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया कि आपने इतने साल ही रहना है। कुछ तो किराए के घर ऐसे होते ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, आप साल भर के लिए उन्होंने आपको दे दिया, आप साल भर रहेंगे ही आप उस, ये वो किराए का घर है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कल को मालिक मकान कह दे, आज शाम कह दे निकलना है तो निकलना है, ऐसा ही है ना? मैं और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करके आए हुए कि हम इस दुनिया के अंदर 60 साल ही रहेंगे या हमने 100 साल ही जी के जाना है, आज शाम का फैसला आ जाए तो आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। बताएं, खुद सोचें, ऐसे घर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? लेकिन हमने क्यों सब कुछ इसके लिए इन्वेस्ट कर दिया? ये नहीं आपको कोई कह रहा है यहाँ पे जरूरत का सामान ना लो, लो जरूरत का सामान, लो रहने सहने के लिए जो आपको पास जरूरतें हैं, जो फायदे के सामान है लें, लेकिन इसको समझें कि ये चंद दिन का फायदा है, मैं इसके ऊपर सारी अपनी जिंदगी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इसके बावजूद हाल ये है कि अगर हमें दीन की कोई बात करने के लिए या इसको सीखने के लिए आना पड़े, या कोई अपनी नमाज के लिए वक्त निकालना पड़े, या दीन की और खिदमत के लिए वक्त निकालना पड़े, इस रास्ते में अगर हमें जाना पड़े, तो हमें लगता है कि ये तो फालतू काम है, और जॉब से तो मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। देखो फिर हम किधर अपनी एनर्जीज खपा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं ना? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में गुजरने वाली एक सुबह शाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है, सिर्फ एक सुबह या शाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर, यानी अल्लाह के रास्ते में अगर आप निकलते हैं दीन की किसी काम के लिए, किसी खिदमत के लिए, दावा वर्क के लिए, कुछ सीखने के लिए, अल्लाह के रास्ते में है ना आप, वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। लेकिन मेरी दौड़े हर जगह के लिए, जॉब के लिए भी हैं, शॉपिंग के लिए भी हैं, बिजनेस के लिए भी हैं, दावतों के लिए भी हैं, हर जगह के लिए भाग दौड़, लेकिन दीन के लिए कितनी है? अल्लाह अकबर। तो आखरत में सिर्फ घर उसके लिए है उसके रब के पास जो मुत्तकी हैं, जो बच बच के चलते हैं, जो इसमें ही अपने आप को खपा नहीं देते कि यहीं जैसे के रहना है और हमेशा यहीं रहना है। और देखें, बच्चों के लिए भी छोड़ जाऊं, उनके बच्चों के लिए भी छोड़ जाऊं, इनके लिए भी बना जाऊं, उनके लिए भी बना जाऊं, और उनके अगलों के लिए भी बना जाऊं। अलग, अभी हमने ये पढ़ा ना, दर्जों पे अल्लाह ताला ने बाज को बाज के ऊपर दर्जा दे दिया इस दुनिया के अंदर। आप देखें अपने सामने की बातें, यकीनन आपने भी देखा होगा, मैंने खुद भी देखा, बाप बहुत कुछ छोड़ के गया, बहुत कुछ। और हिस्ट्री में भी आप ये देख लो, ये खलीफा था, बहुत कुछ छोड़ के गया। तो रिवायत करने वाले कहते हैं कि हमने उन्हीं के बच्चों को देखा कि बाजारों में मांगते फिर रहे थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज कुछ भी नहीं छोड़ के गए, और उनके बच्चे दौलत में खेल रहे थे। हमें तो बड़ी फिक्र है कि हमने अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई मकान भी इनके नाम लगा के चले जाएं, कुछ इनको कारोबार भी सेट करके जाएं, कुछ अकाउंट में भी इतने पैसे होने चाहिए, ये इस चीज की भी फिक्र होती है। खुद भी, हम अपनी भी, और साथ अपनी नस्लों की भी रिस्क की फिक्र हमने ही अपने जिम्मे ली हुई। हालांकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन फिर भी हमें बस परेशानी इस चीज की रहती है, उतनी आखरत की परेशानी नहीं है। अल्लाह अकबर। हालांकि हदीस में आता है, जो अपनी दुनिया बनाता है वो अपनी आखरत का नुकसान जरूर करता है, और जो अपनी आखरत बनाता है वो अपनी दुनिया का नुकसान जरूर करता है। वाकई अगर दुनिया बनाएंगे ना आप, तो आखरत का कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, जाहिर है, क्योंकि एक इतनी जान है कि भाई कुछ एक ही काम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं ना, या इतने आवर्स हैं, 24 आवर्स हर एक के पास है एक दिन में, उसके पास 25वां घंटा तो किसी के पास नहीं है। तो उसमें से अगर 15 घंटे दुनिया में ही लगा दिए और इसी के अंदर खप गए, तो और बाकी रह क्या गया, तो आखरत का तो नुकसान होगा। और जो आखरत के लिए लगाता है, दुनिया का नुकसान जरूर होगा। आखरत के लिए आप अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई दीन का ही काम कर रहे हैं मसलन, कोई दीन की खिदमत कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप जाके कोई जॉब कर सकते थे, आपने नहीं की, तो आपने कोई दुनिया का नुकसान किया ही ना। कहीं आप भी किसी शॉपिंग के लिए निकल सकते थे, सेल पे कुछ चीजें ला सकते थे, कहीं आप भी बैठ के इंटरनेट पे और कपड़े और ऐसी चीजें देख सकते थे, वो मैंने आपको फुर्सत ना मिली, तो आपने दुनिया का अपना नुकसान किया अपनी आखिरत बनाने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब ये सौदा हमारे सामने है, हम किस चीज को चूज करते हैं और किस चीज को पीछे करते हैं। अगर हमें ये बात समझ आ जाती है और इस पे यकीन है, जो अल्लाह ताला यहाँ पे बयान फरमा रहा है कि ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, थोड़ा सा फायदा है, फायदा है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत टेम्परेरी है, इसको लेना चाहते हो या आखरत का हमेशा का फायदा। हम सब अक्लमंद है, हमारे सामने सौदे आते होंगे, हम रोज खरीद फरोख्त भी करते हैं, किस चीज को अपनाना चाहेंगे। तो कभी भी इसको वेस्ट ऑफ टाइम ना समझे, फालतू की चीज ना समझे, जो थोड़ी देर यहां पे बैठते हैं इसको भी बेकार ना समझे, ये बस हर चीज थोड़ी सी बात के लिए इसको छोड़ दो, वहां पे कुछ फायदा नजर आ रहा है, उधर को भागो, ये तो होता रहेगा, इसका क्या बात है, इसकी क्या परवाह है, और ये तो कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, साल बाद भी कर लेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी कर लेंगे, यानी ये बिल्कुल फालतू का ही काम है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसके लिए कल परसों रखी भी है। हाँ, लेकिन आज पैसा कहीं से बन रहा हो तो उसको कभी नहीं कहते, तो कोई बात नहीं, कल बना लेंगे, कल ये सौदा खरीद लूंगी, कल ये बिजनेस कर लूंगी, कल यहाँ इन्वेस्टमेंट, नहीं, कल को क्या पता ये सौदा मिले ही ना, कल को क्या पता कीमतें ऊपर हो जाए, कल को क्या पता ऐसा हो जाए, नहीं, आज ही करो, ये बहुत अच्छी डील आई हुई है, उसके मामले में ये है, लेकिन ये डील अच्छी कभी लगती ही नहीं। अब ये हम कुरान पढ़ने वालों का हाल है, और दूसरों को क्या हम कहेंगे, ये इसकी कोई कदर और कीमत हमारे नजदीक वो नहीं है जैसे कि दुनिया के और कोई फायदे मिल रहे हो तो उसकी हो, इसीलिए तो छोटी छोटी बातों पे इसको छोड़ के भागते हैं, जमना ही मुश्किल हो जाता है, हर एक ही कहते बस इस्तकामत की दुआ करें, क्योंकि वो हमसे हमसे जमा जाता ही नहीं, इस्तकामत आती ही नहीं, और 2 दिन हम पढ़ेंगे भी तो 2 दिन छुट्टी, 4 दिन पढ़ेंगे तो अगले 1 दिन छुट्टी। क्योंकि ये काफी हो गया ना, ये तो काफी सामान हमने जमा कर लिया है आखरत के लिए, असल तो दुनिया के लिए हमें ज्यादा करना चाहिए। इसको तो थोड़ा भी दे देंगे तो चल जाएगी आखरत, हम अगर दुनिया का कहीं नुकसान ना हो जाए ये नहीं चलेगी क्या? अब पता नहीं है कि रात तक कब्र में होते हैं कि जमीन के ऊपर होते हैं, हालांकि ये भी नहीं पता अभी, फिर भी देख ले हमारी प्लानिंग कितनी लंबी है। 100 100 साल की प्लानिंग की भी है, बच्चों और नस्लों तक की भी। वह मई याशु अन जिक्र रहमान, और जो याशु, याशु देखें, अब मैंने आपको बताया इसका दो रूट्स बताए, तो आशा याशु से अगर करेंगे तो मतलब क्या है? एराज करना, गफलत बरतना, तवज्जो ना देना, और अगर आशा याशी से करेंगे इसका तो फिर वो जिसकी नजर कमजोर हो गई हो, निगाह की कमजोरी के लिए आते हैं, अंधेपन के लिए भी आ जाता है। तो यानी जो, इसीलिए आप देखेंगे कहीं गफलत बरतना भी है और अंधा बनना भी है, दोनों माने लिखे हैं। तो क्योंकि जो बताया गया, जो गफलत बरतता है रहमान के जिक्र से, अब देख रहे हैं आप रहमान का लफ्ज कितना आ रहा है, जिक्र किसका, जिक्र से मतलब पहले देख लेते हैं। जिक्र का मतलब है वैसे अल्लाह का जिक्र करना, जैसे सुबह शाम की दुआएं हैं, नमाज है, या कुरान है, या और अजकार हैं, उठने बैठने सोने जागने की जो दुआएं हैं, ये सारे जिक्र ही है ना। इस कुरान को भी अल्लाह ताला ने अज़िक्र करार दिया है, तो ये भी जिक्र है, ठीक है? तो इसी तरह नसीहत भी, जिक्र को नसीहत के माना भी दिया है, कि नसीहत रहमान की, और वो भी कुरान की सूरत में है, या फिर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो भी, यानी नसीहत की बातें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। तो मतलब ये है कि जो भी रहमान के जिक्र से, या उसकी याद से, या इस कुरान से, या ये जो नसीहत का पैगाम है इससे गफलत बरतता है या अंधा रहता है, अंधा बन के रहता है, फिर उसकी सजा क्या है? उसकी कोई सजा भी है? तो कुरान से गफलत तो सारी दुनिया ही बरत रही है। कौन है जो आज कुरान को जानता है? कौन है जो आज कुरान को, जिसने समझा हुआ है? अंधे ही बने हुए इससे, अंधा पढ़ना समझते हैं ना आप, यानी कुरान है लेकिन बस ऐसे जैसे है ही नहीं है, इसी को नहीं तवज्जो देनी, इससे अंधे बन के रहना यही होता है ना अंधापन। आपके सामने चीज है, आपको नजर ही नहीं आती, वो तो तवज्जो ही नहीं इसकी तरफ, तो बात सेम ही हो गई ना, इसे गफलत बरतना, इसे तो तवज्जो ही ना देना, तो उसकी भी कोई सजा होती है, ये भी कोई जुर्म है? हम तो पहले ये पूछते हैं, अच्छा ये कोई फर्ज है कि नहीं है? फर्ज नहीं है तो छोड़ो फिर, लेकिन इसकी कोई सजा होती है? इसको, इससे गफलत बरतने की कोई सजा होती है? अल्लाह को याद ना करने की भी कोई सजा होती है? अल्लाह का जिक्र ना करने की भी कोई सजा होती है? कि नमाज छोड़ दी, अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया, या कुरान छोड़ा हुआ है, या ये जो अल्लाह ताला ने नसीहत की इसको तवज्जो ही नहीं है, बस डोंट केयर, आप समझते हैं कोई इसकी सजा होगी? यहां पे इसकी सजा बताई गई है, क्या फरमाया? नुकय्यिद लहू शैतानन, हम मुकर्रर कर देते हैं एक शैतान को उसके लिए, फहुवा लहू करीन, तो वो उसका साथी बन जाता है, साथी बन जाता है, यानी उसके साथ साथ रहता है बस, फिर सुबह शाम उसका काम क्या है? कि वो इसके साथ रहे, और साथ रह के वो क्या कहेगा इसको? आपका क्या ख्याल है, शैतान से आप कोई खैर की उम्मीद कर सकते हैं? जिसका साथी शैतान बन गया, वो फिर उसको किस तरफ को लेकर जाएगा? कोई खैर की बात तो नहीं करेगा, वो तो जहन्नुम की तरफ ही ले जाने वाला है, जो उसने वादा किया था अल्लाह ताला से कि मैं उसको जहन्नुम की तरफ लेकर जाऊं। तो एक शैतान, क्योंकि एक शैतान क्यों कहा गया? क्योंकि शैतान के जो चेले हैं, उसकी जो हिजब शैतान भी तो है ना, शैतान का भी तो लश्कर है, तो उनमें से एक, उसका प्यादा, उसका एक शैतान जो है इसके साथ दुनिया में लगा दिया जाता है, जो इसको नेकियों से रोकता है, बुराइयों की तरफ उभारता है, बुराइयों की अट्रैक्शन देता है, बुराई को मुजयन करके दिखाता है, खूबसूरत करके दिखाता है, उसको वो रौनक और मजेदार और बड़ा फन करके दिखाता है। वह ये किया जाए और आखरत में भी उसका करीन होगा। कैसे? कि जब ये कब्र से उठेगा तो शैतान इसके साथ साथ होगा, यहां तक कि दोनों जहन्नुम में साथ एंटर होंगे। इसका हाथ पकड़ के रखेगा जब तक जहन्नुम में ना ले जाए। तो जो फिर यहां पे अल्लाह के जिक्र से दूर हुआ उसका साथी इस तरह से शैतान बन जाता है। क्यों? इतनी बड़ी सजा है जो अल्लाह की याद से या इस कुरान से एराज बरतता है, इतनी बड़ी सजा है। यानी उसकी सोबत, उसकी कंपनी किसकी है? कोई कहेगा कि शैतान की कंपनी हो मेरी? परीन वही है ना जो साथी है, जो साथ साथ रहता है बस। और आना कहते हैं उस रस्सी को जिसे दो ऊंट बांधे जाए। देख रहे हैं, एक दो ऊंट एक ही रस्सी से बंधे हैं, ये साथ साथ हैं। तो जिसकी कंपनी शैतान की हो गई, और वो शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं, जिन्नों में से भी हो सकते हैं, इंसानी शयातीन भी तो होते हैं। तो उसका साथी फिर शैतान बन जाता है, वो नहीं उसको आने देता इस तरफ कि अल्लाह के रास्ते की तरफ। आप देखते हैं, अच्छा वो जिन्नों वाले शैतान तो हमें नजर नहीं आते ना, तो हमें इतना पता ही नहीं चलता, लेकिन इंसानी शैतान तो आपके सामने हैं। दुनिया में बहुत सारे इंसानी शैतान हैं जो लोगों को बस जो नेकी काम है उसे डिस्करेज करते रहना, उसके ऊपर मजाक उड़ाना, उसके ऊपर ताने देना, उस चीज को हकीर करके दिखाना, उन लोगों को आउटडेटेड करार देना जो अल्लाह की बात मानने लग जाए बस, वो तो उसके ऐसे दरपे हो जाते हैं, ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जैसे इनको कुछ कह दिया। अमल दूसरा कर रहे हैं लेकिन वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, इंसानी शैतान। और बुराई के कामों के ऊपर बड़ा इनकरेज करते हैं, वो कोई कर रहा हो तो उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं, उसको बड़ा अच्छा कहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया में, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको बहुत इनामात से नवाजते हैं। उसको वो बुराई के काम कर रहा है उसकी बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये इंसानी शयातीन भी है और एक जिन्नात में से शयातीन भी है। ऐसे लोगों की सोहबतें फिर शयातीन के साथ ही होती हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है उस शैतान को। वैसे तो हर एक के साथ ही शैतान लगा हुआ है, एक शैतान आपको पता है ना, हर ये ईमान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने पूछा था कि क्या आपके साथ भी कोई शैतान है? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन वो मुसलमान हो गया। तो यानी हर बंदे के साथ एक शैतान लगा हुआ। हमारा शैतान हमें उकसाता है, हमारे बस उसे डालता है, तो वो एक शैतान अलग है और एक ये शैतान है जो हमेशा ही साथ लगा रहता है। ठीक है, और इन्ना हम ला यसुद्दूना हम अन सबील, और बेशक वो अलबत्ता रोकते हैं उनको रास्ते से। किस रास्ते से? हक के रास्ते से, हक के रास्ते से रोकते हैं वो उनको, सीधे रास्ते पे सिराते मुस्तकीम से रोकते हैं। यानी ये शयातीन ये काम करते हैं, इन उनका बस एजेंडा ही ये होता है, बस इनको इस तरफ ना आने दिया जाए। वह यह सबूना अन्ना हम मुहतदून, और वो लोग क्या समझते हैं? हम तो बड़े हिदायत वाले हैं, हम तो आप हमें क्या समझते हैं? हम कोई बुरे लोग हैं? आपको क्या पता हमारे दिल का? हम तो बिल्कुल सही चलने वाले, हम तो बिल्कुल खैर के उसके ऊपर है। आप अपने आप को बहुत नेक समझते हैं। उनको अगर बताया भी जाए ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत सही काम करते हैं। इसीलिए ऐसे शख्स को अगर आप दीन की भी दावत देते हैं ना, तो वो उल्टा आपके गले पड़ जाता है उसका, क्योंकि साथ उसके शैतान है। वो क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दूर रहते हैं ना, तो शैतान उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। अब आप उनको बताएं भी तो वो कहते हैं हम आपसे ज्यादा हिदायत वही आते हैं, आप हमें क्या बताएंगे, हमें ज्यादा पता है। और गुमराहियों में डूबे हुए हराम रास्ते पे चलने वाले, वो भी अपने आप को समझते हैं मैं जी मुझसे ज्यादा नेक कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। आप उनको कह के देखिए हक की बात, खैर की बात, कहते हैं आपको ज्यादा पता है। यानी वो अपने आप को बहुत हक पे समझते हैं। और चले दूसरों की क्या बात करनी, हम अपने आप को देखें कि हम क्या करते हैं। या हम भी तो नहीं कि अगर हमें कोई खैर की बात बताए, हम कहें हमें तो ज्यादा पता है, आप हमें क्या बताएंगे, आप हमें क्या कहेंगे। अल्लाह के जिक्र से दूर होना इंसान को कितनी बड़ी सजा से दोचार करता है। इसके अंदर जरूरी नहीं कि वो इसका इनकार ही करने वाला हो, बल्कि बस एराज करता है, तवज्जो ही नहीं देता, इस तरफ आना ही नहीं है। इस कितना बड़ा नुकसान है इसका, लाजमी लाजिम कर देना, कैद मुहैया करना, अल्लाह ताला मुहैया कर देता उसके लिए। तो अब बस साथ 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 सारा वक्त शैतान उसके साथ है, इसी वक्त उसका पीछा छोड़ता ही नहीं, हर वक्त ही उसको हराम की तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, और जो अल्लाह की फरमाबरदारी के काम है उनमें सुस्ती, उनमें गफलत, उनके तरफ तवज्जो ना देना, उनको हकीर समझना, इस तरह करता है, उनको मुश्किल करके दिखाता है, साए की तरह साथ साथ रहता है, अलग ही नहीं होता किसी बात पे, और उसकी कोशिश यही होती कहीं खैर का कोई काम ना ये कर ले। और देखें आप कि शैतान के हर एक के लिए अलग अलग टैक्टिक्स हैं, उसके मुताबिक कोई तो कुफर पे है तो उसके लिए इस्लाम पे आना मुश्किल कर देगा, कुफर ही उसको पसंद करा देगा, वो इस्लाम के अंदर है तो अब उसको गुनाहों की अट्रैक्शन देगा और नेकी के काम उसके लिए मुश्किल बनाएगा, कोई नेकी की तरफ भी जरा आ जाता है उसके अंदर खलल डालने की कोशिश करेगा और उसको इसके अंदर सुस्ती कराएगा और उसको दूसरे कामों में इतना इन्वॉल्व कर देगा कि वो उसके लिए खैर के काम के लिए वक्त निकालना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युआरिद अन ज़िक्री रब्बी यसलुकु अज़ाबन सआदा, ये सूरह जिन में, के जो अल्लाह के जिक्र से राज बरतता है ना, अल्लाह ताला उसको सख्त अजाब में दाखिल फरमाएगा। तो दुनिया में भी देखें ऐसे लोगों के साथ ये शैतान लग जाते हैं और उनको सही रास्ते की तरफ आने नहीं देते, बल्कि इस रास्ते को उनके लिए रुकावटें डालते हैं, मुश्किल बनाते हैं, रोकते हैं इस रास्ते। रोकने के कई तरीके हैं, रोकने का ये भी तरीका है कि वो इतना मुश्किल लगने लगे कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये भी रोकना। रोकना ये भी है, इंसान ये दूसरे कामों में ऐसा इन्वॉल्व कर दिया जाए कि वो इस रास्ते की तरफ आने को अपने लिए मुमकिन ही ना समझ पाए, ये रास्ते पे मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो और चीजों के अंदर इतना मशगूल हूं। अल्लाह का रास्ता उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगे, ये उनकी सजा है जो अल्लाह के जिक्र से एराज बदल बरतते हैं, ऐसे अंधे बन के रहते। हम सूरह ताहा में पढ़ भी आए हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया उसके अंदर कि जो भी अल्लाह ताला के जिक्र से अंधा रहता है अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन अंधा ही उठाएगा। जो कोई फरमाया उसमें जो कोई मेरे जिक्र से एराज करेगा तो मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा, माईशतन दन का वहां पे आया, जिंदगी उसकी दुनिया की जिंदगी भी तंग हो जाएगी और कयामत के दिन उसको अंधा उठाऊंगा, यानी दुनिया से चैन सुकून इत्मीनान उठ जाएगा, वो डिप्रेस रहेगा बेचैन रहेगा, क्योंकि जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र से है। हम सुकून के लिए दुनिया की रंगीनियां, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, इस तरह की चीजों के पीछे भागते हैं, इनमें इंटरेस्ट लेते हैं कि मुझे कहीं सुकून मिल जाए, मगर जब इंसान इन चीजों के पीछे भागता है तो वो देखता है कि उसके बाद भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी रंगीनियां यहां पे रख दी हैं लेकिन सुकून को अपने पास रख लिया, ताकि अगर इंसान दुनिया में डूब जाए तब भी सुकून लेने के लिए अल्लाह ही की तरफ भागे, वो सुकून उसके पास है, बाकी सारी चीजें ये सारी एंटरटेनमेंट की और ये दुनिया में रखी वो नहीं अल्लाह के पास, अल्लाह ने अपने पास नहीं रखी उनको, दुनिया में रख ली, सुकून अपने पास रखा। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो तुम्हें अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, तब तुम्हें वो सुकून हासिल हो सकता है। तो और वो कैसे अल्लाह के रास्ते से रोकता है, लहव व लाब में गर्क करवा के, लहव लहव में, बेकार चीजों में, खेल तमाशों के अंदर, ऐसी चीजों के अंदर डाल के इंसान को अल्लाह के रास्ते से रोकता है। और शराब और जुए के बारे में भी सूरह मायदा में आता है कि उसके जरिए भी शैतान अल्लाह के रास्ते से रोकता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जैसे घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, और जब खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो शैतान फिर कहता है अपने चेलों से कि आज तुम्हारे लिए सोने की भी जगह मिल गई और खाने को भी खाना मिल गया। और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र कर लेता है, तो कहता है आज एक रात गुजारने की भी जगह नहीं है और ना शाम का खाना है, जब खाने पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो इस तरह शैतान इंसान को मुसलसल गमगीन किए रखता है, इस तरह भी वो अल्लाह के रास्ते से उसको रोकता है, मुसलसल गमगीन, मुसलसल डिप्रेस, मुसलसल नेगेटिव थिंकिंग डाल डाल के। वो अपनी ना थूथनी, उसकी थूथनी ऐसे जैसे खंजीर की होती, वो इंसान के दिल के ऊपर रखता है और फूंके मारता है, वसवसे डालता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, पीछे हट जाता है। ये वसवास खन्नास यही है। तो इमाम इब्ने कय्यम लिखते हैं कि जब इंसान सुबह और शाम करे और उसकी परेशानी सिर्फ एक अल्लाह की जात हो, यानी उसकी परेशानी क्या है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैंने उसके सामने खड़े होना है, आई मैं कैसे हिसाब दूंगा, मेरे अल्लाह की नजर में मैं इस वक्त कैसी हूं, यानी उसकी सारी परेशानी ना सिर्फ एक अल्लाह की जात बन जाए, तो अल्लाह ताला उसकी सारी जरूरतों को अपने जिम्मे ले लेता है। और फिर वो चीज जो उसे परेशान करे उसको भी अपने जिम्मे ले लेता है, और उसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए, और उसकी जुबान को अपने जिक्र के लिए, और उसकी आज़ा को अपनी इताअत के लिए लगा देता है। यानी फिर सिर्फ उसको ये फिक्र है कि जब मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए, उसकी बाकी सारी फिक्रें अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली, अब उस उन फिक्रों से उसको आजाद करती है। एक ही धुन उसको लगी भी, अल्लाह की साथ, उसको राजी करना, उसके लिए भाग दौड़, उसके लिए काम कर रहा है, अल्लाह मेरा खुश हो जाए, मेरे अल्लाह के लिए ये, मेरे बाकी सारी ही फिक्रें अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता। और ऐसे वाकई लोगों को देखा है मैंने, उनके काम कैसे हो रहे हैं और उनके काम कौन कर देता है और किस तरह से हो जाते हैं, और वाकई अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए होते हैं। ये नहीं कि कोई गैबी चीजें आके उनके काम कर रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला वो भी उनके काम करा देता है, इतने आसान हो जाते हैं उनके, जो बाकी लोगों के लिए इतने मुश्किल होते हैं, वो अब खप जाते हैं उन कामों में, इनके काम आसानी से होते जाते हैं। उनकी फिक्र जो है ना, वो एक अल्लाह की जात बन गई है, उसकी जरूरतों को भी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है, उसकी परेशानियों को भी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। और इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि अगर वो सुबह शाम इस हाल में करे कि दुनिया ही उसकी परेशानी हो, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी, गम और तकलीफों को उस पर लाद देता है, फिर बस उठते बैठते लेटते वो बस एक ही चीज उसके दिमाग पे सवार, उसे उसके नफ्स के हवाले कर देता है, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मखलूक की मोहब्बत की तरफ फेर देता है, यानी बस लोगों की मोहब्बत में ही वो लग जाए और बस उन्हीं को खुश करने के लिए उन्हीं के पीछे भागता दौड़ता रहे, और उसकी जुबान को अपने जिक्र से हटा के लोगों के जिक्र की तरफ लगा देता है, यानी जुबान से भी अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, लोगों की बातें होती जा रही, और उसके आज़ा को अपनी इताअत से हटा के लोगों की खिदमत में लगा देता है, यानी लोगों को खुश करने के लिए वो बस हलकान रहता है। यानी अल्लाह ताला फेर देता है ना, अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं वो कोई काम करता, बस लोगों के लिए काम कर रहा है, और वो ऐसी मुशक्कत उठाता है जैसी जंगली जानवर मुशक्कत उठाते हैं, यानी लगा हुआ है, जानवरों की तरह लगा हुआ है, गधों की तरह काम करता है, ना लोग खुश होते हैं, ना उसकी फिक्रें खत्म होती हैं, ना परेशानियां खत्म होती हैं। अल्लाह अकबर, कितनी ट्रू है ना ये बात। वाकई जब इंसान ये अल्लाह की रजा से ज्यादा लोगों की रजा मकसूद होने लगे, और लोगों के पीछे ही वो भाग रहा है, लोगों के पीछे ही वो अपनी नमाजें छोड़ रहा है, कभी लोगों की खिदमतें करने के लिए वो मैं उसके लिए जा रही हूँ, मैं ये मेहमान नवाजियां कर रही हूँ, मैं फलां चीज कर रही हूँ, उनके पीछे ही भागता जाता है, तो अल्लाह ताला बस उसको इन्हीं चीजों के अंदर डाल देता है। तो अल्लाह का जिक्र में सुकून का बायस भी है। अल्लाह के जिक्र के जरिए इंसान अल्लाह की जात से जुड़ा रहता है और शैतान से महफूज रहता है, वरना शैतान उसका करीन बन जाता है। जब इंसान अल्लाह के जिक्र से अरसे तक दूर रहता है और इससे गाफिल रहता है, अंधा रहता है, तो बस शैतान उसका साथी है, फिर उसे कोई खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये सुकून बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। ये दुनिया के मालदारों को, पैसे वालों को भी नहीं मिलती, इतनी बड़ी दौलत है ये सिर्फ अल्लाह के पास। लोग इसके लिए मारे मारे फिरते हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि सुकून हासिल हो रहा है, चाहे कोई शराब भी इसलिए पीते हैं कि सुकून मिल जाए मुझे, मेरे गम दूर हो जाए, गम गलत करने के लिए मैं पीता हूं। तो देखो सुकून फिर भी नहीं उनको मिलता, क्योंकि ये सुकून अल्लाह के पास है। शैतान जिसका करीन हो जाएगा उसको कहां से सुकून मिल सकता है। इसलिए इस जिक्र के साथ जुड़े रहना इंसान की जरूरत है, अल्लाह की जरूरत नहीं है। ये मैं कोई अल्लाह ताला को कोई फेवर दे रही हूँ, कोई एहसान कर रही हूं, मैं जी बड़ी इधर को आ गई तो पता नहीं कितनी मेरी वजह से ही दीन को कोई अरूज मिला, नहीं, मैं अपने लिए भला कर रही हूं। जब इंसान अल्लाह के जिक्र के साथ लग जाता है ना, तो उसका शैतान जो है ना थक जाता है। इसीलिए एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अपने शैतान को थका दो अल्लाह का जिक्र कर करके, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि वो थक जाए, उसको समझ ही ना आए मैं थक गया हूं इस बंदे को हटा हटा के, ये हटता ही नहीं इस रास्ते से, वो थक जाए, इतना आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह के जिक्र के बड़े फवायद हैं। अल्लाह ताला का जिक्र जो इंसान करता है वो उसका दिल आबाद रहता है, और जो जिक्र से दूर रहता है तो उसका दिल ऐसे है जैसे मुर्दा हो चुका है। एक मुर्दा और जिंदा में अल्लाह के नजदीक यही फर्क है। हत्ता इजा जा अना, हत्ता के जब ऐसा शख्स हमारे पास आएगा, कौन सा, वो जिसकी बात हो रही है ना कि एक वो बंदा है जो अल्लाह के जिक्र भी तवज्जो ही नहीं करता, अंधा बन के रहता है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो तो सारी दुनिया की परवाह उसको है, लेकिन जो कुरान है, जो ये नसीहत है, अल्लाह का जिक्र है, जो दिलों की जिंदगी है, इससे दूर रहता है। अब दूर रहते रहते दिल की रोशनी कम होते होते खत्म हो गई, और बस मुस्तकिल अब शैतान उसका दोस्त बन गया। अब इसी तरह जिंदगी गुजारता रहा कि शैतान उसको फिर आने ही नहीं देता था इस रास्ते की तरफ, और वो अपने आप को, देखिए ये कितनी बड़ी कितना बड़ा एक धोखा कह सकते हैं, जो इंसान अपने आप को देता रहता है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हर एक को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसके बाद जब इंसान का एंड आता है तब पता चलता है ना, तब आंखें खुलती हैं, वो ये तो गलत था जो मैं कर रहा था, मैं कहाँ ठीक था। एंड देन द लास्ट लाफ इज ऑफ शैतान, शैतान की विक्ट्री हो गई ना, फिर लास्ट लाफ शैतान को नहीं देनी। याद रखें कि हम मरने लगे तो उस वक्त शैतान खुश हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। जाता कि अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा शख्स जो हमारे पास आएगा ना क़यामत के दिन, हालही तबीनी व बईने का बादल मशरिकैन, उस वक्त कहेगा फिर, हाय काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब जितनी दूरी होती। अब तो उसको देख भी सकता है उस शैतान को, दुनिया में तो नहीं देख सकता था, तो वसवसे थे। इंसान बुरे काम करके समझता रहता था ना कि मैं सही हूं, अब आंखें जब खुली हैं, अब आगे हलाकत नजर आ रही है, तो अब कहता है हाय काश इसके और मेरे दरमियान तो इतना फासला होता जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान, इतनी दूरी होती, मैं कुछ शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उस दिन भी ये कहा कि आज भी नहीं देखना चाहता, और दुनिया में भी काश ऐसा होता। अल्लाह के दुनिया में तो उसने साथी बना लिया था इसको, और साथी तभी बनता है जब इंसान अल्लाह की जिक्र से दूर रहता है, उसकी याद से दूर रहता है, उसके कुरान से दूर रहता है। इसने ऐसे ही जिंदगी गुजार ली, शैतान इसको थपकी देता गया देता गया, तू अच्छा कर रहा है, तू बड़ा सही चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ, ऐसे ही डराते रहते हैं, कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, वो इसी धोखे के अंदर पड़ा रहा, और जब अब वहां पहुंचा, अल्लाह, तो आप देखा हो आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उनका बताऊं जो अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में है, अल्लदीन तला सायुम फिल हयात दुनिया हम या सबूना अन्ना हम होता तू, जिनकी सारी जिंदगी की जो कोशिश और भाग दौड़ थी ना वो इसी दुनिया के अंदर ही गुम हो गई, वो सारी भाग दौड़ इसी के लिए थी, इसी में गुम हो गई, और वो क्या समझते हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो दुनिया में ही गर्क रहे, दुनिया के कामों में वो अपने आप को लगाए रखा, उनकी सारी कोशिश वहीं गुम होके रह गई थी, और वो क्या समझ रहे थे कि वो ठीक है, इससे ज्यादा बदबख्ती क्या होगी इंसान की कि उसको ये एहसास ही खत्म हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूं। कभी जिसको एहसास हो जाए ना कि नहीं मैं सही नहीं चल रहा, मुझे अपने आप को सही करना है, वो तो फिर भी शायद कभी समर जाए, कोई उसकी सलाह हो जाए, लेकिन जो सोचता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या बताएंगे, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं नेकी तो हूं, उसको कौन बता सकता है, वो कैसे अपने आप को सही करेगा, वो तो अपने आप को खुद ही नेक समझता है। हमारे अंदर गलती क्या है, कुछ भी नहीं गलत है, तो क्या हो गया अगर ये करते हैं तो क्या इससे फर्क क्या पड़ता है, सारे ही करते हैं, ऐसे शख्स को कौन सही कर सकता है। अल्लाह हु अकबर। आदर समूद भी अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते थे, बहुत समझदार, हमसे ज्यादा अकल वाला कौन होगा, हमसे ज्यादा अच्छे काम करने वाला कौन होगा, और फिर देखो उनके साथ क्या हुआ। तो उस दिन कहेगा फबिसल करीन, कितना बुरा साथी है ये, क्योंकि इसने बेड़ा गर्क कर दी। वाकई सोहबत का तो असर होता है ना, इसीलिए पैगंबरों ने भी सालेहीन की सोहबत मांगी है, दुनिया में भी और आखरत में भी, दुआओं में से है कि अल्लाह ताला हमें सालेहीन का साथ अता फरमान। और कहा ये कि शैतान करीन बन जाए, वलई अनफाव उमल यौमा, और हरगिज नहीं नफा देगा तुमको आज ए जलम तुम, जब जुल्म किया तुमने, अन्नकुम फिल आजाबी मुश्तरिकून, तुम अजाब में अब मुश्तरिक हो, सब कंबाइन हो एक ही अजाब में, जब तुम जुल्म करके आ गए तो अब अपनी जानों पे खुद ही जुल्म किया ना, तो अब तुम्हें इस बात से कोई फायदा नहीं होगा कि हाय मेरे और इसके दरमियान इतना फासला हो जाए और दूरी हो जाए और ये कितना बुरा है और ये ऐसे है, इन बातों से आप कोई फायदा नहीं होना, अब तो अजाब के अंदर तुम सब इकट्ठे हो। उस दिन ये जो ऐसे जालिम, ऐसे जिनके साथी शैतान बने हुए थे, उस दिन तो ये अपने हाथों को चबाएंगे, कुरान में आता है ना, ये अपने हाथों को चबा चबा के कहेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया उस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा, कहेगा काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। ओके, ये शैतानी इंसान भी तो होते हैं ना, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया, और शैतान दोस्त बना रहा, अभी इंसानों के भेस में और जिन्नों वाले शैतान तो हैं ही। अल्लाह अकबर। लेकिन इससे कोई फायदा होगा, उसके ये काश कहने से, ये विशफुल थिंकिंग से कोई फायदा होगा, अब नहीं, अब कोई तसल्ली नहीं है तुम्हारे लिए, कोई लौटना नहीं है तुम्हारे लिए, कोई ये नहीं कह सकता मेरा क्या कसूर था, इसने मुझे कराया। हम दुनिया में तो ये कह के बरी जिम्मा होने लगते हैं ना, मैं क्या करती, इसने करा दिया था, उसने ये कह दिया था, उसने ये मुझे ले गई थी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, उसने मुझे बातों में लगा लिया था, मैं तो उसकी बातों में आ गई, यहां पे शायद कोई गेट अवे हो जाए इससे, लेकिन कयामत के दिन इन इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहा जाएगा आज हरगिज नहीं नफा देगा तुमको ये, और ये भी कि तुम अजाब में सारे एक साथ हो, यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी को कम किसी को ज्यादा, तुम दोनों ही अजाब में हो, और ये चीज भी इंसान को कोई तसल्ली नहीं दे देगी कि चलो मैं अजाब में हूं, वो भी तो अजाब सह ही रहा है ना, दुनिया में होता है ना, किसी के ऊपर गम आता है तो वो दूसरे की मुसीबत वैसी ही हुई पड़ी हो तो वो कहता है कि अच्छा, उसको तसल्ली हो जाती, मैं अकेला नहीं हूं, देखो इसके ऊपर भी तो मुसीबत है, पता नहीं इसके ऊपर शायद मेरे से भी ज्यादा है। तो इंसान को थोड़ी तसल्ली होती, वहां पे इस चीज से तसल्ली नहीं मिलनी कि देखो सारे ही तो जल रहे हैं, अगर मैं भी जल गया तो क्या हो गया, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। और दूसरे वहां पे कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होगा कि इंसान को तसल्ली दे दे। तसल्ली देने से भी चलो थोड़ी बहुत इंसान की तकलीफ कम हो जाती है कि कोई थोड़े तसल्ली के बोल बोल देता है, कोई थोड़ी हिम्मत हौसला इंसान को मिल जाता है, वहां पे वो भी नहीं कोई होगा। और कोई होता भी अगर तसल्ली देने के लिए, तब भी कोई फायदा ना होता, अव्वल तो होगा ही कोई नहीं। लेकिन देखे ना आप, दुनिया में भी बाज दफा ऐसा नहीं होता कि अगर इंसान किसी बहुत शदीद किसी तकलीफ से गुजर रहा हो, या कि कोई किसी के ऊपर कोई अल्लाह ताला महफूज रखे कोई गम का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो, और कोई दूसरा आके तसल्ली दे ना, तो वो आगे से यही कहता है कि मेरी तकलीफ को तुम क्या जानो, ये तो मैं ही जानती हूँ जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ, ऐसे कहते हैं ना, ये तो मुझे ही पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। तो बाज दफा दुनिया में भी तसल्ली देने से कोई तसल्ली नहीं होती, लेकिन उस जहन्नुम के अजाब के अंदर तो कोई ना तसल्ली देने वाला होगा, और अगर होता भी तो उससे कोई फायदा ना होता, और ना ही दूसरों को देख के जरा हिम्मत हौसला होगा कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूं, सारे ही हैं इसके अंदर, ना उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इंसान उस दिन कितनी बेबसी के आलम में होगा, किस तरह से वो गेट अवे नहीं कर सकेगा इस चीज को कहने से कि आए काश मैं तो शैतान को, बस अब क्या फायदा कहने का। अफ अंता तुस्मिउ सुम औ तहदिल उमिया अमन काना फी दलाले मुबी। ए नबी, आप सुनवाएंगे बहरों को, ये जो बहरे हो चुके हैं इनको कोई असर नहीं हो रहा, ये तो ऐसे कर रहे हैं कि इनको बात सुन ही नहीं रही, सुना सुना के भी फिर भी हिदायत नहीं पा रहे, या आप क्या हिदायत देंगे। देखिए इससे पता चलता है ना, एक तो होता है कि इंसान किस चीज से उसके ऊपर असर होता है, या तो कोई बात सुनता है तो फिर कोई उसको कह दे भैया ये रास्ता गलत है इस पे ना जाओ, सुन लिया उसने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन अगर कोई बहरा है उसके आगे कितना मर्जी बोलते जाओ, उसको सुन ही नहीं रहा उसको, तो वो क्या रास्ता बदलेगा। दूसरा बंदा है, आप उसको कहते नहीं वो उस रास्ते की तरफ जाओ, इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो अंधा है अगर, तो उसको तो कोई पता नहीं चलेगा। और वमन का नफी दुलाल मुबीन, यहाँ जो खुली गुमराही में, यानी ये अंधे और बहरे हो चुके हैं, आप सुनवाते भी जाएं ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। बास दफा वाकई ऐसे होता है, इंसान को लगता है दीवार में टकरे मार रहा है, कहते जाओ लेकिन जैसे सुनना ही नहीं, जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आप उसको कैसे हिदायत देंगे जो अंधा हो चुका। राह दिखाना हो तो उसको ना जो राह देखना चाहे, वो तो उसने देखनी नहीं, आप उसको बताते जा रहे हैं, वो तो इशारा भी करते जा रहे हैं, वो नहीं देखना चाहता ना सुनना चाहता, जो बिल्कुल गुमराही में डूब चुका है। तो आप भला कैसे आप उसको हिदायत दे सकते हैं, कैसे आप उसको सुनवा सकते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से तसल्ली दी गई कि कुछ लोग अंधे बहरे आपका कसूर नहीं है, आप अपनी जान को इनके पीछे हलकान ना करें, हलाक ना करें, ये जब बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, गुमराही में डूब चुके हैं, तो इनको कैसे आप राह दिखाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिर्स बहुत ज्यादा थी ना, आए काश ये आ जाए इस तरफ। तो इनके साथ अपनी इतनी एनर्जी लगाना और अपने इतनी फिक्र करना और इतना गम करना, इसकी जरूरत नहीं है, ये पत्थर है, वाकई दिल पत्थरों की तरह हो जाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त अल्लाह ताला ने फरमाया। तो एक दाई दीन के लिए इसमें तसल्ली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थी, और वो दाई दीन जो अल्लाह के दीन के लिए बहुत कोशिशें कर रहा हो लेकिन दूसरे को हिदायत फिर भी ना मिल रही हो, कोई सुन ही नहीं रहा, तो वो ये ना सोचे कि पता नहीं मेरा को कसूर है, बल्कि बाज लोगों में हिदायत पाने की इस्तेआत ही नहीं रहती, अल्लाह हू अकबर। इससे पता चलता है कि जब इंसान सुनना बंद कर दे तो फिर उसको हिदायत नहीं मिल सकती। अगर सुनी अनसुनी करते हैं, जिक्र की मजलिस में बैठ के भी ऐसे हैं कि जैसे सुम्मुन बुकमुन, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्मीयन बने हुए, तो कोई राह नहीं दिखा सकता। कोई आपको कितनी क्लासों में बैठ जाए, कितनी दरसों में बैठ जाए, कितनी ऐसी मजलिसों में चले जाएं जो अल्लाह के जिक्र की हो, फिर भी अगर अंधे बहरे बने रहेंगे, कौन दिखा सकता है रास्ता? सर्टिफिकेट ले लेंगे, डिग्रियां ले लेंगे, हिदायत फिर भी नहीं मिलेगी। इसके लिए कान खोलने की जरूरत है, दिल की आंखें खोलने की जरूरत है, ये तलब जरूरत है कि मुझे राह दिखाओ, मैं राह देखना चाहता हूं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये तड़प जरूरी है। और ये तड़प है ही नहीं है, हमें तो खुद ही पता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और वही रास्ता सही है और हम ठीक ही तो हैं, फिर क्या कौन बता सकता। पर इम्मा नज़हबन नबी का, फिर अगर हम ले जाएं आपको, इन्ना मिनहुम मुंतकिमून, तो हम इनसे तो इंतकाम लेने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये इसलिए फरमाया कि काफिर जो थे ना, वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी ये मुश्किल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल खत्म हो जाएगी, हम ये या तो फौत हो जाए या इनके ऊपर जो कुछ भी हो जाए, ये ना होंगे ना तो सारा वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पहले था, हम आराम से रहते थे, अब क्या ये हमारे ऊपर मुश्किल आ गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, अगर हम आपको ले भी जाएं यानी फौत भी कर लें, तब भी इनके से तो अल्लाह ही इंतकाम लेगा, ये तो फिर भी नहीं बच सकते। औ नूरी यन्नक अल्लदी वादना हम, या हम आपको दिखा भी दें, आपको इतनी जिंदगी भी दे दें, यानी आपके जाने से ये नहीं हो जाएगा कि इनकी छूट हो जाएगी, इनके पास तो हक आ चुका, हुज्जत तमाम हो गई। अल्लाह ताला का नाम मुंतकिम नहीं है, इंतकाम लेने वाला ये अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इंतकाम लेता है, ठीक है। और औ नूरी यन्नक अल्लदी वादना हम, या हम दिखा दें आपको वो चीज जिसका वादा किया हमने इनसे, यानी अजाब, कि अगर अगर ये ना माने तो अजाब आएगा, अगर हम आपको दिखा भी दें, फइन्ना अलैहि मुक्तदिरून, तो बेशक हम इन पर कुदरत रखने वाले, यानी आप जिंदा रहें या ना रहें इससे फर्क नहीं पड़ता, आप देखें या ना देखें, हम अगर इनके ऊपर अजाब का वादा जो हमने इनसे किया है वो आपको दिखा भी दें, तो भी हमारी कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, और अगर हम आपको उठा लें तो तब भी आपके पीछे से अल्लाह ताला इनसे बदला लेने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि बेशक अल्लाह अज्जा वजल जब अपने बंदों में से किसी उम्मत पर रहमत करने का इरादा फरमाता है तो उस उम्मत से पहले उस नबी की रूह कब्ज फरमा लेता है, फिर इस नबी को इस उम्मत के सामने मेहरबान पेशरौ बना देता है, और जब किसी उम्मत की हलाकत का इरादा फरमाता है उसके नबी की जिंदगी में उसको अजाब में मुब्तला करके हलाक कर देता है, और वह नबी इस उम्मत को अजाब में देखता है, फिर इनकी हलाकत से उस नबी की आंखें ठंडी कर देता है क्योंकि उन्होंने उस नबी को झुटलाया और उसके अहकामात की नाफरमानी की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, और कुरान करीम में आता है ना, वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम, ए नबी जब तक आप इनके अंदर हैं अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा, आपकी जात रहमत थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो मक्का वालों के ऊपर ये मुश्किलात आई कि अल्लाह ताला ने उनके बड़े बड़े सरदारों को बदर के अंदर हलाक कर दिया, ये भी एक अजाब की किस्म थी। आपको आपकी आंखों से भी दिखाया, एक छोटा अजाब था, मतलब वो बड़ा वाला तो नहीं लेकिन छोटा एक उनके लिए अजाब आया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो आपके जाने के बाद भी जो लोग आपकी तालीमात को नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला इंतकाम लेगा। फस्तमसिक बिल्लदी ओहिया इलेका, तो ए नबी आप थाम के रखें उसको, किसको, जो वही की गई है आपकी तरफ, इनका आला सुरात मुस्तकीम, आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं, यानी जो पैगाम, जो वही का पैगाम आपके ऊपर अल्लाह ताला ने उतारा है ना, ये नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपने लोगों को तो पहुंचा देना, खुद बेशक आप कुछ ना करें। जैसे आप देखते हैं ना, ये बड़े बन के बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीर जी, हमें तो नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जो इतने पहुंचे हुए हैं इनको नमाज की क्या जरूरत, ये तो हर वक्त मुराकबे में ही होते हैं, ये तो पता नहीं कौन सी मजलिसों में होते हैं, ये तो पता नहीं किस रसूलों के साथ और उनके साथ बैठे होते हैं उनकी मजलिस में, ये कहीं और पहुंचे हुए हैं, इनको कहाँ नमाज, और उसका ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए नमाज पढ़ना, ये करना ये करना, इनके क्या है ना, वो कुछ करते हैं ना, बस एक बस योगा पहन के बैठे हुए, पता नहीं कौन कहाँ पहुंचे हुए, आंखें ऊपर को चढ़ी हुई है, ये कौन सा दीन है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी फरमाया, नबी आप इस तिमसाक क्या है, मजबूती से थामना, ऐसे भी नहीं है ढीला डाला भी, मजबूती से थाम ले ए नबी, आप उसको जो वही किया गया आपकी तरफ, यानी सबसे पहले आप इसके ऊपर अमल करें, आप इस पे अमल करें, आप सीधे रास्ते पे, यानी ये अमल करें ना करें, ये इस तरफ आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूछ नहीं है, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, मगर आप अमल करें इसके ऊपर, यानी आपको भी एब्जॉल्व नहीं कर दिया अल्लाह ताला ने कि आपको जरूरत नहीं है, आप बस इन तक पहुंचाएं, आपको क्या जरूरत है, आप तो खुद इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे हैं, आपको क्या जरूरत है आप नमाजें पढ़ें और ये इतनी रात को उठ के इबादत करें और तहज्जुद के लिए खड़े रहें और आपके पैर सूज रहे हैं और ऐसा, और आपको क्या जरूरत है, नहीं, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही को अपने अमल में लाए और अब सबसे पहले खुद अप्लाई किया। तो ये जितने लोग इस तरह की बात करते हैं ना, वो सब झूठे हैं जो ये कहते हैं अभी इतने बड़े मर्तबे पहुंच गए, इनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बरी नहीं थे तो और कौन हो सकता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ऊपर अमल करके दिखाया तो और कौन इसे ऊपर अबव हो सकता है। और यही हमारे लिए भी है कि हम ठीक है, बाज दफा हम इस किताब को आगे पहुंचाने की तगोदो में इतने लग जाते हैं ना, खुद अमल करना ही भूल जाते हैं कि हमने खुद भी करना है, तो पहले खुद इसके ऊपर चलने के लिए कोशिश करें, इसको मजबूती से खुद थामें, दुनिया को आपने पहुंचाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो ठीक है, लेकिन अपने आप को ना भूलें कि हमने भी तो अमल करना है, ये नहीं कि मेरी नमाजें जा रही हैं लेकिन मैं दर्स देने के लिए कहीं पहुंची नहीं, ये नहीं कि मुझे अपनी परवाह है नहीं लेकिन मैं लोगों की बस बड़ी मुझे खैर खाई है, मैंने उनको जहन्नुम से बचाना है, खुद मुझे जहन्नुम से बचने की कोई परवाह नहीं। तो ठीक है, लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन सबसे पहले इंसान की जिम्मेदारी अपनी है, या अय्युहल लदीना आमनू कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी इंसान की होती है कि वो इस पे अमल करे, ये नहीं कि दूसरों की फिक्र में वो खुद अपने आप को भूला हुआ है, बस दूसरों को ही बताया जा रहा है। और दूसरा, इंसान के लिए जो ताई दीन सच्चा है उसके लिए तसल्ली भी है, ठीक है आप तो सीधे रास्ते पे हैं, आप चलते रहें, आपका काम बता देना था, इनके से पूछ अल्लाह ताला खुद ही करेगा, आपने पहुंचा दी है, आप बस इसके ऊपर खुद चलते रहें और मजबूती से इसको थामे रखें, वा इन्नहू लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक, और ये जिक्र है आपके लिए और आपकी कौम के लिए, ये कुरान याद दहानी है और ये कुरान शर्फ है, देखें ये बड़ी बात इसमें बताई गई, जिक्र मतलब ये कुरान, और जिक्र का मतलब यहाँ पे शर्फ भी है, ये शर्फ है आपके लिए, इन्नहू का जमीर किस तरफ जा रही, कुरान की तरफ, ला जिक्रो शर्फ है और नसीहत है, इसको सही कर ले कि इन्नहू हु की जमीर कुरान की तरफ है और जिक्र से मुराद दो चीजें, नसीहत और शर्फ, यानी ये कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत भी है, ये नहीं कहा गया कि आपके लिए तो जरूरत ही नहीं है, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जरूरत थी तो मुझे और आपको नहीं जरूरत, याद दहानी की नहीं जरूरत, हम तो अपने आप को इतना ही समझते हैं कि हमें क्या जरूरत है याद दहानी कराने की, हम सब कुछ पहले ही हमें याद है, और आपकी कौम के लिए, कौम से मतलब कौन है, यानी आपकी कौम से मुराद कुरैश भी है और आपकी उम्मत भी है, तो दोनों मतलब है इसके, यानी कुरैश के लिए भी नसीहत और आपकी सारी उम्मत के लिए भी इसमें नसीहत है। नंबर टू माना, शर्फ है, ऑनर है, ये ऑनर का बायस है। किसके लिए? आपके लिए भी, कि अल्लाह ताला ने ये कुरान जैसी इतनी बड़ी रहमत आपके ऊपर नाजिल फरमाई। अर रहमान अल्लाम अल कुरान, रहमान ने ये कुरान नाजिल फरमाया। कुरान के नजूल से पहले अल्लाह ताला का जो सिफाती और बास कहते जाती नाम भी अर रहमान है, वो अल्लाह ताला लेकर आया। वाकई कुरान अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि देखें ये आयत नंबर 36 में भी जिक्र रहमान, रहमान का जिक्र है, उससे लोग मुंह मोड़ते हैं। हालांकि रहमान के जिक्र से तो मुंह मोड़ना ही नहीं चाहिए, अल्लाह ताला रहमान है। देखिए रहमत कौन नहीं चाहता, और वो सरापा रहमत है, रहम ही रहम है। उसकी तरफ से आने वाला जिक्र, तो इंसान को तो उसकी तरफ भागना चाहिए। जिक्रुल्लाह नहीं कहा गया, देखिए ना आप नोट करें, जिक्र रहमान, रहमान का जिक्र है, तुम उससे मुंह मोड़ते, तुम्हारी अकलों को क्या हो गया? ये तो रहमान का जिक्र है, उसकी तरफ से याद दहानी है, उसकी तरफ से नसीहत है। तो उसकी तरफ से आने वाली नसीहत, उसकी तरफ से आने वाला यह कुरान, तो ए नबी आपके लिए भी बड़े शर्फ की बात है और आपकी उम्मत के लिए भी बहुत शर्फ की बात है। कौमी का से अगर हम उम्मत लें, तो आपकी उम्मत के लिए भी बड़े शर्फ की, बड़ी इज्जत की बात है। देखिए ना कितनी बड़ी इज्जत की बात हमारे लिए जाती है जब हमें मसलन कोई आज के दौर में मिसाल के तौर पे हमें जब कहा जाता है कि भाई देखो भाई साइंस ने भी ये प्रूव किया, ये तो कुरान में पहले ही, तो हमें कितनी खुशी होती है। ये देखा कुरान हमारा हक है, और फिर जैसे कितनी खुशी होती जब कोई कुरान को पढ़ के इसकी तरफ आता है और मुसलमान हो जाता है, तो हमें कितनी खुशी होती है कि वाकई कुरान हक है। जब हमें पता चलता है कोई बताता है कि इतना कुरान का असर हुआ, तो भी हमारे लिए कितनी खुशी का, और ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई चीज को अच्छा कह दिया ना, हमारे लिए कितनी ऑनर की बात होती है। और जब बताया जाता है इसमें ये बातें, देखें आज ये सारी बातें वाकई सच हो गई और ये आज इंसान को पता चला और ये देखो, तो कितनी खुशी। तो ये हमारे लिए एक शर्फ की चीज है, पूरी उम्मत के लिए और कुरैश के लिए भी था जाहिर है, क्योंकि कुरैश के पास सबसे पहले ये किताब आई और उनकी जुबान में आई, उनके सारी दुनिया मोहताज थी उनकी जुबान की, फिर हो गई और सारी रहती दुनिया तक कयामत तक मोहताज ही रहेगी इस जुबान की, ये कुरैश की जुबान में उतरा, तो कितना बड़ा उनके लिए भी शर्त था। तो दोनों माने से आप समझ आ गई, आपको नसीहत भी ले, नसीहत लेके फिर कौम से मुराद कुरैश और उम्मत ले तो क्या माना बनता है, और शर्फ से मुराद ले इसको जिक्र को, कि ये शर्फ है आपके लिए और आपकी कौम के लिए। वसौफ तुसअलून, हाँ जी ये भी अब जवाब देना पड़ेगा, जब जाहिर है एक शर्फ दिया अल्लाह ताला ने, एक इज्जत दी अल्लाह ताला ने, एक नेमत दी है, एक नेमत है ना, मानते हैं आपके नहीं मानते? जाहिर है अल्लाह ताला की जब रहमत उतरी है और अल्लाह ताला ने एक शर्फ दे दिया, एक ऑनर दिया, तो ये एक नेमत है ना, एक नसीहत का पैगाम उतार दिया, तो ये एक नेमत है ना। हाँ जी, तो नेमतों का सवाल होना है कि नहीं? सुम्मा लतुसअलन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फिर जरूर बर जरूर बर जरूर तुम पूछे जाओगे नेमतों के बारे में, सवाल किया जाएगा। और यहाँ पे भी वसौ तुसअलून, और तुमसे अनकरीब सवाल किया जाएगा, पूछे जाओगे। क्या पूछा जाएगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है बताएं? कुरान की ना, तो क्या पूछा जाएगा कुरान के बारे में, हिफ्ज किया था कि नहीं, या आगे पीछे से इसका टेस्ट लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुरान पे ईमान लाए कि नहीं? ईमान लाने का समझते हैं? हाँ जी, हम सारे ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब भी पता है, आपने माना जो भी हर चीज इसमें थी, मानते कैसे, हमें तो पता ही नहीं था इसमें है क्या, बस खाली खुली कह दिया कि हाँ मानते हैं, हम ईमान रखते हैं, वो कोई चीज कुरान है ना, एक किताब हो जो हमारे घर में पड़ी हुई है ना शेल्फ में, खूबसूरत गिलाफ है, हाँ, हम उसके ऊपर ईमान लाए हैं, उसमें है क्या, आपको क्या पता? अब भाई मानना, आपको कहे आप मानते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, आपको पता होगा तो फिर ही आप कहेंगे ना, ऐसी बात के ऊपर कह देंगे पता ही नहीं हो कोई चीज का, आपका हाँ हम मानते हैं, तो बस ईमान लाना समझ के, शऊरी ईमान की बात हो रही है, सिर्फ जुबानी बातें नहीं, शऊरी ईमान, इसके बारे में सवाल होगा। और वो बगैर समझे नहीं हो सकता कि आप ईमान लेकर आ जाएं, क्योंकि वो शऊरी नहीं होगा फिर। इसीलिए देखे ना, जो शऊरी तौर पे ईमान लाते फिर वो मुसलमान हो जाते हैं, उनकी जिंदगी ही बदल जाती हैं, शऊरी ईमान है ना वो। हम वहीं के वहीं हैं जब से पैदा हुए, हमने शऊरी ईमान ही नहीं लेकर आए, समझा ही नहीं। जो समझने लगता है उसकी तो दिल पे ये कुरान उतरता है, तो इसका सवाल होना है। और फिर इसमें अमल किया कि नहीं, ये भी सवाल होगा। हाँ जी, अमल कितना किया? नहीं, अमल तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हमसे होता। ये जवाब देना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि सवाल किए जाओगे। हम तो अभी इसी बहस में लगे हुए ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग ये सवाल करते, ये फर्ज है, ये सीखना फर्ज है। नहीं, जो पांच अरकान है इस्लाम के, उनमें तो कहीं पे भी नहीं है कि कुरान पढ़ा जाए। अच्छा, अल्लाह पर ईमान लेकर आया तो उसके कलाम पे ईमान नहीं लाओगे? और क्या हर चीज वो पांच अरकान के अंदर ही है? अल्लाह ताला ने तो सच बोलने को भी फरमाया, तो झूठ बोला करोगे, वो पांच अरकान में से तो नहीं है सच बोलना। तो ये कैसी जहालत की बातें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी आंखों से खुद पढ़ लें। ये देखें, सौफ तुसअलून, इसके बारे में सवाल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक नियमत दी है, इसके बारे में वो पूछेगा अमल किया था या नहीं। अच्छा चलो भी अमल भी कर लिया, अगला सवाल क्या है? या पैगंबर तो नहीं आने थे? पैगंबर तुम्हें एक काम देके गए थे, इस कुरान में भी ये काम लिखा हुआ है, या तुम्हें उम्मत वसत बना के उठाया गया है लोगों को, तुम मारूफ की हुक्म दो और मुनकर से रोको, तो ये तुमने अपना फरीजा अंजाम दिया? ये कुरान को आगे पहुंचाने का फरीजा ये अंजाम दिया, इसको आगे पहुंचाया, इसके लिए को कोशिश की, कहीं बूथ लगाते, लोगों को बुलाते, आओ कुरान की तरफ, आओ कुरान की मैं दावत देती हूं आपको। तुमने हर चीज की, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कितनी तरह की बातें करते हैं, झूठ भी मिलाते हैं, सच भी धोखा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी ऐसी करते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे चीजें करते हैं कि बस हमारी चीज बिक जाए। कुरान के बारे में तो हर खैर की बात सच है, लेकिन तुम इसको लेके नहीं कभी खड़े हुए। हमें तो आता ही नहीं ये काम, हमें आता ही नहीं, हमें बोलना भी नहीं आता, हमें कुछ करना भी नहीं आता, लिहाजा ठीक है कोई बात नहीं, ये भी पूछा जाएगा। आगे पहुंचाया, ये पांच हकूक हैं इस कुरान के, इसके ऊपर ईमान लाना, इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसको आगे तक पहुंचाना, सीखा समझा। तो ये कुरान हिफ्ज करने के लिए नहीं आया, ये अल्लाह ताला ने नहीं सवाल करना कि आपने हिफ्ज किया। हिफ्ज इसलिए हम करते, हमें वो बातें याद रहें, क्योंकि जो चीज जाहिर याद की भी है जहन में, तो वो अमल के वक्त वो याद आ जाएगी, वो कुरान में तो ये है, इसलिए हिफ्ज करते हैं। इसलिए नहीं कि हिफ्ज के तमगे ले लो, बस हाफिज बन गए, हाफिज फलां भी हाफिज, फलां भी हाफिज, और देखिए मेरा बच्चा हाफिज बन गया, और इसके ऊपर मैं, मुझे बस बैज मिल जाए, मेरे इतने बच्चे हाफिज हैं। भाई हिफ्ज तो इसके अंदर है ही नहीं है, इसके हकूक में ये सवाल नहीं है, हिफ्ज किसने किया? हमारी दौड़ और हमारा जोर सारा किस पे? हिफ्ज कर लें, अबे मैं लोगों को फखर से बता सकूं मेरे बच्चे ने हिफ्ज किया है, इसकी पार्टी हो जाए और सारी जिंदगी के लिए हाफिज नाम चिपक जाए इसके साथ, हाफिज साहब कहलाएं, बस काम पूरा हो गया आपका, हिफ्ज कर लिया तो ना उसकी समझ है, ना उसके ऊपर कोई अमल है, ना उसको आगे फैलाने की कोई कोशिश है, उसको अगर किसी ने हिदायत का पैगाम ही है उसमें जो है वो समझा, तो हिफ्ज करने का क्या फायदा? तो तोते को हिफ्ज करा लें आप, वो तोते को भी सामने जो दो बातें करते रहे ना, वो ही रिपीट करता जाता है। तो हिफ्ज मकसद नहीं है, हिफ्ज सिर्फ इसलिए कि हमें अमल के वक्त याद रहे, हमें पता हो मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया। तो ये एक नेमत है और इसकी कदर यही है कि हम इसके हकूक अदा करें। लेकिन ना आपके वालदेन, आप कहते मैं जी इनकी बड़ी कदर करती हूँ, उनका हक अदा ही ना करें, उनको फेंका हुआ एक तरफ, उनकी बात ही नहीं सुनते, उनको कभी पूछते ही नहीं, तो आपने उनकी क्या कदर की। हम कहते हैं कुरान की हमारे दिल में बड़ी कदरों कीमत है, ये कदरों कीमत है कि इसको छोड़ रखा है, इसको पूछते ही नहीं है आप कभी, कोई काम करने से पहले इससे भी मशवरा करते, कुरान क्या कहता है, मैं ये कारोबार हलाल है कि हराम है ये कुरान में देखूं, मैं ये खा सकती हूँ पी सकती हूँ ये कुरान में देखूं, मैं रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करूं ये कुरान में देखूं, मैंने बातें कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी ये कुरान में देखूं, मैंने लिबास कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना ये कुरान में देखूं, मैंने फकीरों मोहताजों के साथ कैसा सलूक करना है ये कुरान से मैं सीखूं। कभी इसके लिए खोलते, हमने तो छोड़ रखा इसको साइड पे डाला हुआ। तो कयामत के दिन ये कुरान शिकायत करेगा इंसान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या खिलाफ हुज्जत बनेगा, दोनों में से एक जरूर होगा, या तो हक में बोलेगा वहां पे खड़ा होके कहेगा अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा या अल्लाह इसने मुझे इमाम बनाया, या अल्लाह ये इसने मेरे लिए वक्त निकाला, या अल्लाह ये मुझे पढ़ता था सीखता था समझता था, तो इसको पढ़ना इसके ऊपर ईमान रखना इसको सीखना इसको समझना इसको अमल में लेकर आना इसको आगे पहुंचाना, इसके ऊपर वो सिफारिश करेगा इंसान की। इसके साथ कोई दो वक्त लग जाए हमारे तो हमें मुश्किल हो जाती, टेस्ट क्यों देते हैं आप, वो टेस्ट इसीलिए तो देते हैं आप थोड़ी देर बैठ जाए इसके साथ, इसलिए नहीं देते कि हमें को बहुत आपको कोई फेल करने का या पास करने का नंबर देने का हमें बहुत शौक है, वो तो एक जरिया है आपको बिठाने का, आप खोल लें जरा इसको, वैसे तो हम खोलेंगे नहीं, चलो इस वजह से ही खोल लें। अगर मेरे दिन के अंदर पहले 1 घंटा कुरान के साथ गुजरता था तो अब 3 घंटे गुजर रहे हैं, इस पे खुश नहीं है हम, हमें यह कि हो टेस्ट से हमारी बड़ी जान जाती है, टेस्ट ना दिया करो तब हम इस कुरान की तरफ आ जाएंगे। अगर वाकई हर सुल आखिर और हर सुल दुनिया हमने पढ़ा था ना, अगर वाकई हर सुल आखिरा के लिए कर रहे होंगे हर से दुनिया के लिए कर रहे होंगे तो मुझे परवाह भी ना होगी कि मेरे नंबर कितने हैं, मेरे हर सुल आखिरा में मेरे नंबर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक एक मिनट को गिनती हूं कि मेरे रब के पास ये लिखा जा रहा है, किसी को भी नहीं पता मैं अपने घर में कितनी देर लगा रही हूं, मैं सारा दिन बैठी हुई हूं आधा दिन बैठी हूं 1 मिनट बैठी हूं, मेरे रब को पता है मैं 1 मिनट बैठी हूं और मेरे 25 नंबर आ गए, वो ज्यादा फायदेमंद है, या मैं 4 घंटे बैठी हूं मेरे 4 नंबर कट गए फिर भी वो ज्यादा फायदेमंद है, खुद आप अक्लमंद है बताइए। लेकिन फिर भी अफसोस ही नहीं जाता, हाय नंबर ऐसे हो गए वो, तो हमने तो पढ़ना ही नहीं, अब हमारे नंबर काट लेते हैं, हमने तो पढ़ना ही नहीं हमें ए ग्रेड नहीं दिया, हमने पढ़ना ही नहीं हमें हमें तो सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे, अबव हूं इससे खुदा के लिए, अब इतनी दफा कुरान पढ़ चुके या हम अब 25वें पारे पे आ गए अभी भी अगर हम वहीं खड़े हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर करके टेस्ट कर रहे हैं, जरा सा मैं देख लूं क्या है ये नंबर, क्या अल्लाह ताला इसका सवाल करेगा तुम्हारे कितने नंबर आते थे और सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कितने हैं, लाओ दिखाओ सर्टिफिकेट है या नहीं है, शील्ड है या नहीं है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं हमारे नंबर कम हो गए, हाय हाय पिछली ग्रेजुएशन में हमें ये किया था तो हमने नहीं, अब इस तरह पढ़ना तो ऐसे हो गया तो हमें अब ना बुलाना, अगर हमें ऐसे किया तो अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं देना तो फिर हमसे ना बात करना, हमें बुलाएं भी ना, इतनी छोटी हकीर चीज के लिए हमने सौदा करा, कितने छोटे के ऊपर हम बिक गए, एक कागज का पुर्जा एक सर्टिफिकेट इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर, खुदा के लिए इससे ऊपर उठें, अपनी सोच को अपने जहन को खोलें और हर साल आखिरा में क्या लगा रहे हैं वो देखें, ना कि नंबर नंबर नंबर, सिर्फ हर साल दुनिया है, 4 लोग देख लेंगे ना कह देंगे आपको बहुत लायक हैं आप, उसके बाद क्या है, अगर ये कुरान अमल में ना आया अगर हमने इसको समझा ना अगर हमने इसको पिलाने की कोशिश ना की, हमसे ये सवाल होने, हमने इसको पढ़ना ना सीखा सही, ये सवाल होगा। एक अल्लाह का कलाम है, उसके ये हकूक अदा ना किए, इसके पर पूछ होगी, डिग्रियों नंबरों के ऊपर नहीं होगी। लेकिन हमारा दिमाग अभी तक उसी के अंदर, जिससे बात करो हाँ हम आ जाएंगे, लेकिन आप टेस्ट ना दिया करें, खुदा के खौफ करो, कहते हुए भी सोचो ये टेस्ट क्या चीज है। वो मुझे नहीं परवाह टेस्ट की, वो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बस मेरी जिंदगी लग जाए इस कुरान के साथ, मेरी आखिरी सांस तक ये कुरान मेरे साथ रहे, मुझे इसकी परवाह हो, मेरे से ये नेमत कहीं छूट ना जाए, अल्लाह मुझसे ये नेमत ले ना लेना इसकी फिक्र हो। हमारे तो दिमागों पर टेस्ट ही सवार हो गए, क्या हो गया है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे स्टूडेंट ये बात करते, मैं इनको क्या सिखा रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यही होता है, अल्लाह हमने अपना काम कर दिया पहुंचाने का, बस इनको नहीं समझ आती तो क्या कर, आप सर खपा नहीं सकते। जब ये देखते हैं लोगों के कामों को, मेरे पास आते हैं लोग आके मुझे बताते हैं, शायद उन लोगों को भी पता नहीं होता कहाँ कहाँ से शिकायतें मेरे पास आती हैं, आपके स्टूडेंट ये कर रहे थे, आपकी स्टूडेंट ने ऐसा किया। तो फिर यही होता है, अल्लाह मैंने तो इनको ये नहीं सिखाया था, मैंने तो इनको ये नहीं बताया था, मैं क्या कर सकती। ऐसे उल्टे सीधे काम के जो सुन के भी दुख होता है, कब से पढ़ रहे हैं, कब से बताया जा रहा है, फिर भी वो ही चीजें, फिर भी वो काम आज तक ना छूटे। हाँ कोई बशरी कमजोरियां, ये नहीं कहते कुरान पढ़ के कोई बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ढिटाई के साथ वहीं के वहीं वो ही काम करते रहना, अल्लाह अकबर। तो याद रखें कयामत के दिन ये कुरान का सवाल होगा, और कुरान पढ़ने वालों से भी सवाल होगा, हम फारिग नहीं होगा कि हमसे तो सवाल होना नहीं, क्योंकि हम तो कोर्स में आ गए हैं जी, हमने इतने कोर्स कर लिए, सबसे सवाल होना, जिन्होंने इसको छोड़ा हुआ है उनसे भी होगा, जो इसको पढ़ रहे हैं उनसे भी होगा, जो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी होगा, कितना किया अमल और कैसा अमल किया और किसके लिए वो अमल किया, क्या वो अमल भी कहीं दुनिया के लिए ही तो नहीं था कि इसको दिखा दें, इसमें शोहरत पालें, ये अमल भी इसलिए कर रही हूं क्योंकि तसारे मुझे नेक बीबी समझ लें, खूबसूरत की रात भी इसलिए हो रही ताकि लोग मेरी आवाज की तारीफ करें, हिजाब भी इसलिए लिया जा रहा है कि लोग मेरी तारीफें करें, दीदी देखो कितना कुरान पे अमल कर लिया इसने, क्या अमल भी कहीं दुनिया के लिए ही तो नहीं हो रहा, क्या लोगों को आगे पहुंचाने में भी क्या यही तो नहीं है कि मुझे बैजेस मिल जाए, कितनी अच्छी वॉलंटियर थी, इसने काम बहुत ज्यादा किया, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मेरे ऊपर तालियां बज जाएं, वो बज जाएंगी इस दुनिया में, शोहरत भी हो जाएगी, स्टेज पे भी बुला लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, कयामत के दिन जीरो ही नहीं है माइनस में है, क्योंकि आप वो हदीस आपको पता होगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा उनमें एक आदमी वो भी है जिसने इल्म हासिल किया, लोगों को सिखाया और कुरान करीम को पढ़ता था, उसको लाया जाएगा और अल्लाह ताला नेमते गिनवाएगा उसको, मैंने तुझे ये दी दे, वो पहचान लेगा नेमतों को, अल्लाह ताला फरमाएगा तूने नेमतों के होते हुए क्या अमल किया, वो कहेगा मैंने इल्म हासिल किया, मैंने दूसरों को सिखाया, मैंने तेरी रजा के लिए अल्लाह कुरान को पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने इसलिए इल्म हासिल किया कि मुझे आलिम कहा जाए, तूने कुरान इसलिए पढ़ा कि तुझे कारी कहा जाए। तो ये हो गया, ये दुनिया में मिल गया जिसको जो मिलना था, जो नंबरों के लिए कर रहे हैं उनको दुनिया में नंबर भी मिल गए, जो सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, यही चाहिए ना, मिल जाएंगे, लेकिन कयामत में कुछ नहीं है, फिर आखरत में कुछ नहीं, क्योंकि ये हदीस बताती है कि फिर हुक्म दिया जाएगा कि इसको मुंह के बल घसीटा जाए, यहां तक इसको जहन्नुम में डाल दिया जाए, इतना नोबल काम है, इतना इज्जत वाला काम है, इतना बड़ा नेकी का काम है, लेकिन उस दिन इसी वजह से कि कुछ और ही कामों की वजह से वो ये करता रहा, किसी और ही चीज के पीछे वो भागता रहा, किसी और ही, उसकी नियत ही कुछ और, उसकी तलब ही कुछ और ही थी, उसका मकसद ही कुछ और था, उसकी हिरसी किसी और चीज के लिए थी। तो वो तो ठीक मिल गई, वो तुम्हें मिल गई दुनिया में, यार अब जहन्नुम। इसके लिए तो इखलास चाहिए, तो सिर्फ पढ़ना सीखना काफी नहीं, जो पढ़ने सीखने वाले भी हैं यानी उनसे भी हिसाब होगा कि इखलास भी था कि नहीं था। तो हम इससे अब बरी जिम्मा नहीं हो जाएंगे कि हमने कोर्स कर लिया तो जी बड़े काफी हो गए हम। अब ये भी है कि इखलास के साथ किया था कि नहीं, क्या तुम्हारी मकसद क्या था, तुम्हें चाहिए क्या था इससे, तुम्हारी नजर किस चीज पे थी। वैसे हम सब कहते हैं कि नहीं, हम तो किसी और चीज के लिए, ना सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं ना किसी चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ नंबर नंबर तो मुझे जरूर चाहिए। तो देखें ये सब सवालात होंगे वहां पे, ये सब देखा जाएगा, और देखने वाला कौन है, वो जो अंदर तक की बातों को जानता है। मैं सेटिस्फाई हो सकती हूँ, कोई और सेटिस्फाई हो सकता है, हम किसी दुनिया वालों जितने भी लोग हैं उन सबको बड़े अच्छी तरह मुतमईन कर सकते हैं। मेरी नीयत तो बहुत अच्छी, और मैं तो बहुत ज्यादा अमल करने वाली, और मैं तो इतनी कुरान की, बस सारा बात कुरान ही तो कुरान होता है मेरी जुबान पे, लेकिन जिसकी अदालत में हमें खड़ा होना है ना, मुझे भी और आपको भी, उसकी नजर दिलों पे है, दिल में क्या था वो बहुत अच्छी तरह जानता है, उसको धोखा नहीं दे सकते, ये धूल झोंक सकते हैं इंसानों की नजरों में। या अल्लाह ताला के सामने हम सब नंगे हैं कि इंसान कोई चीज छुपा ना सकेगा। अभी भी हम अपनी नियतों का भी जायजा लें, अपने अमल का भी जायजा लें, अपने इस पढ़ने का भी जायजा लें, और क्या कोशिशें हमारी हो रही हैं इसको फैलाने में, उसका भी जायजा लें, क्योंकि वसौफ तुसअलून, हमसे सवाल किया जाएगा, और जो नहीं बिल्कुल ही इस तरफ आ रहे वो भी देख लें कि उसके बाद फिर कहीं ये ना हो कि शैतान साथी बन जाए, वो उसने फिर इस रास्ते को इतना मुश्किल बना देना है ना इस सिराते मुस्तकीम को, कि वो फिर और इंसान समझता रहे कि जी मैं बड़ा ठीक हूं, उसका भी क्या अंजाम है वो भी देख लें। तो इस अहमियत को समझे, सोचें ये मेरे लिए शर्फ है, ये तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अजीम तोहफा दिया, इसकी मैं ये कदरदानी कर रही हूं। कपड़ों की भी कदर है, चीजों और चीजों की भी कदर है, जेवरात की भी कदर है, और भी जितनी भी चीजें दुनिया की उनकी बड़ी कदर है, हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कुरान कितना मिले, उसमें मिनिमम तरीन सबसे छोटा कोर्स बता दें जिसके अंदर कुछ भी ना टाइम देना पड़े, बस हफ्ते में जाके मुझे जरा सी देर के लिए, वो भी बहुत है मेरे लिए। पैसों के लिए भी यही कहा करें, खाने पीने के लिए भी यही कहा करें, और चीजों के लिए भी यही कहा करें कि नहीं जी मुझे तो बस, और हाँ जो एंटरटेनमेंट है उसको भी कहा करें, कभी कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो हर हफ्ते होनी चाहिए, हर वीकेंड होनी चाहिए, वो इतने घंटों की तो जरूरी होनी चाहिए, बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं हम कहते, इसमें क्यों मिनिमम पे राजी होते हैं, और बाकी चीजें उनको कोई एंड नहीं, वो तो 100 कपड़े भी मेरे पास होंगे तो मैं कहूंगी 102 होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ करे, बस अलमन अरसलना मिन कबलिका मैं रसूलिना, और पूछिए जिसको भेजा हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से, अजालना मिन दूने रहमानी आलिहतन यअबदून, क्या हमने उनको लिए बनाए रहमान के सिवा कुछ इलाज जिनकी बंदगी की जाए। आप पूछें पिछले रसूलों को भी तौहीद का ही पैगाम दिया गया, क्या उनको कोई और बताएगा कि किसी और को वो पूजें, नहीं पिछले रसूलों को भी यही कहा गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पूछ सकते थे। असल में मुशरिकिन को समझाने के लिए भी बताया जा रहा है, दूसरे मेराज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर सकते थे, तीसरे ये कि उनकी किताबों से पता चलता है कि उनको भी तौहीद का ही पैगाम दिया गया, और वो भी एक अल्लाह की इबादत करते थे। अब आगे मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का वाक्या जो हम कई दफा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसमें मुख्तसरन गुजरेंगे, ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. اور البتہ تحقیق، یہ تین تاکیدیں و ل اور قد، ہم نے بھیجا، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ. کون سی آیات؟ ید بیضہ اور عصا. ٹھیک ہے، ان آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فقال انی رسول رب العالمین، انہیں جا کے فرمایا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ رب، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ وہ جو عالموں کا رب ہے، میں ان کی طرف سے رسول ہوں. فلما جاء ہم بھی آیا تھی نا، پھر جب لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام لائے، اذا هم منها يضحكون، تو وہ اس پہ ہنستے تھے. ہنستے کیوں تھے؟ کیونکہ انسان جب کسی چیز کو حقیر کرنا چاہتا ہے نا، تو طنز کے طور پہ بھی ہنستا ہے، اور دوسروں کو اس سے ہٹانے کے لیے بھی ہنستا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں. تو انہوں نے اس کو ہنسی کا نشانہ بنایا، استہزا کیا. جیسے آج بھی لوگ کئی چیزوں کو اللہ کے احکامات کے پر ہنسنے لگتے ہیں. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَاتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں ہم دکھاتے ان کو کوئی نشانی مگر زیادہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے. بہن کا مطلب کیا؟ یعنی پچھلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی. اور یہ نشانیاں کون سی تھی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ اب تمہارے اوپر طوفان آنے والا ہے، اب تمہارے اوپر قحط آنے والا ہے، اب اس کے بعد تمہارے اوپر ٹڈیوں کا حملہ ہوگا، اب اس کے بعد تمہارے اوپر مینڈکوں کا حملہ، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر خون کا عذاب آئے گا، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر مطلب اس طرح سے سسریوں اور جوؤں کا عذاب آئے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں فرمایا، فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سارے عذاب بھیجے، اور ہر عذاب کے اوپر وہ آتے وقت کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو دعا کر تو ہم اس کے اندر سے نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ اس ہٹا دیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ لوگ وہی کام کرتے تھے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو ان عذابوں میں اس لیے پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں، لیکن وہ پھر بھی رجوع نہیں کرتے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وقالوا يا ايها الساحر، تو وہ کہتے تھے اے جادوگر ادو لانا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے. جادوگر اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک طرح سے ان کو طنز کرتے تھے کہ تو تو جادو کرنے والا ہے. ادو لانا ربا کا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، تو رب تیرا ہے. یعنی اب یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا رب، یعنی جیسا ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، تو تیرا ہی رب ہے، تو اسے دعا کر. بما عاہدہ اندک، اس عہد کی بنا پر جو اس نے تجھ سے کیا. کون سا عہد؟ یا تو نبوت مراد ہے کہ اس وجہ سے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، یا دوسرا موسیٰ علیہ السلام اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے نجات کا وعدہ کیا ہوا، تو اس وجہ سے ہمارے لیے دعا کر. اننا لمحتدون، تو البتہ ہم ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ہم ہدایت پہ آ جائیں گے جب تم دعا کرو گے. تو رو کے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، تو جب ہم کھول دیتے تھے ان کے اوپر سے عذاب، یہ ہٹا دیتے تھے عذاب، تو وہ پھر وہی حرکتیں کرتے تھے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون کو جب تھریٹ ہوا کہ یہ کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ ہو جائیں مائل، کیونکہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا تھا، تو اس کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان ہی لے آئے ان کے اوپر. تو اس نے اپنی قوم کو بلایا، منادی کی وہاں پہ سارے جمع ہو جائیں، اور اس نے قوم سے ایک خطاب کیا. کیا کہا؟ قال یا قوم لیس لی ملک مصر، اے قوم کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہت کہ میں جو مرضی اس میں کروں، یہ میری بادشاہت ہے یہاں پہ. وہذه الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہتی ہیں، یعنی میں نہروں کا بھی مالک ہوں، یا نہریں میرے قبضے میں ہیں. افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنی بڑی چیز ہوں، تو میں بڑا ہوں. ام انا خیر من ھذا، کیا پھر میں بہتر ہوں؟ کیونکہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس بادشاہت ہے مصر کی، اور میرے کہنے کے اوپر نہریں بہ رہی ہیں، یعنی میرے کہنے پہ تو نہیں لیکن میرے قبضے میں یہ نہریں ہیں. تو میں بہتر ہوں یا یہ الذی ہوا مہین، جو حقیر ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ولا یکاد یبین، اور اپنی بات بھی واضح طور پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض تفسیروں میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چونکہ لکنت تھی اس لیے وہ کہنے لگا، اور وہ بچپن میں تھی، تو اب وہ اس کا تانہ دے رہا ہے کہ یہ بہتر ہے ہمیں. یعنی اس نے بھی کس چیز سے اپنا کمپیرزن کیا، جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ مال اور بادشاہ تو میرے پاس ہے، تو میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہے، حالانکہ ان کے پاس نبوت تھی جو ہر مال اور ہر اس سے بہتر ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب जाए माह मलाइका तुम मुकतरिनीन, क्या क्यों नहीं इसके ऊपर उतरते कंगन सोने के इसके ऊपर आते, या फिर इसके साथ फरिश्ते होते जो इस प्रोटोकॉल के साथ इसके आगे पीछे होते और फरिश्ते इसके साथ चल रहे होते, और ये को बड़ी चीज होता है, यानी उसके नजदीक ये था कि सोने के कंगन उस वक्त बादशाह पहना करते थे, तो क्यों नहीं इसके पास सोने के कंगन है या इसके साथ फरिश्ते हैं, क्योंकि यही चीजें उनके नजदीक बड़ी थी। फस्तहफ्फा कौमहू फअताऊहू, तो उसने अपनी कौम को हल्का पाया। हल्का पाने से यहाँ पे मतलब क्या है, यानी अपनी कौम को बेवकूफ बना लिया, एक तो ये इसका मतलब है कि बेवकूफ बना लिया, या ये कौम को उसने बेवजन कर दिया, कोई उनकी हकीकत उनकी राय को बेवजन कर दिया, उनको सोचने का मौका तक नहीं दिया, उनकी उनको बेवकूफ बनाया ना जैसे, तो फअताऊहू तो उन्होंने उसकी इताअत कर ली, वो भी सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े। तो एक तो माना कि उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया, दूसरा माना अपनी कौम को आसानी से अपना ताबे बना लिया। इससे हमें पता चलता है कि एक लीडर जो होता है अगर वो बिगड़ा हुआ है तो अक्सर जो कौमें होती हैं अपने लीडर को देख के चलती हैं और अंधी हो जाती हैं, ये नहीं सोचती कि ये सही भी हमें कह रहा है या नहीं, ये हमें सही तरह रास्ते पे भी लेके जा रहा है या नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम हमें क्या कह रहे हैं और हम इसके रास्ते जाए, वो अंधाधुंध उसके पीछे चल पड़े। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो थे ही फासिक कौम, वो खुद ही फासिक थे, वो खुद नाफरमान थे, इसीलिए वो इसके कहने पे चले, वरना जरा भी अपनी अकल इस्तेमाल करते तो इसके रास्ते पे ना जाते कभी। फलम्मा सफूना, तो जब वो गुस्से में लाए हमको, इंतकमना, तो हमने इंतकाम ले लिया मिनहुम उनसे, फगरकना हम अजमाइन, तो हमने गर्क कर दिया उन सब के सबको। आप देखें कितनी दिलचस्प बात है ना, कि उसी फिरौन ने कहा था कि हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये तो नहरें मेरे कब्जे में मेरे हुक्म से हैं, तो उसी नहर के अंदर वो गर्क हुआ, इसके कब्जे में होती तो वो उसमें गर्क तो ना होता। अल्लाह हु अकबर, जब वो अपने करतूतों से हटे नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम ले लिया। फजअलनाहुम सलफन, तो बना दिया हमने उनको पेश रो, यानी भूली बिसरी दास्तान, गए गुजरे लोग, पिछले लोग गुजर चुके, जो यानी वो सरवाइव भी नहीं कर सके, अब जो अपने आप को इतना बड़ी चीज कहता था। वह मथल लिल आखिरीन, और बाद वालों के लिए उनके अंदर एक मिसाल छोड़ दी अल्लाह ताला ने कि देखो इनका अंजाम कैसे होता है जो ऐसे तकब्बर करते हैं और जो अंबिया की तालीमात को पीछे डालते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين